नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे प्रोग्राम माइंड मैटर्स में। जैसा कि आप जानते हैं, कहा भी गया है कि स्वस्थ शरीर की संरचना स्वस्थ मन से होती है। अगर हमारा मन स्वस्थ है, मन तंदुरुस्त है, तो शरीर बीमार होते हुए भी यथार्थ काम करता रहता है। तो ऐसी कौन सी बातें हैं मन की जिन पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है? हमारे कुछ ऐसे इमोशंस हैं जो हम सबके मन को घर कर कर बैठे रहते हैं, जैसे कि तनाव है, स्ट्रेस जिसे हम कहते हैं, एंगर है, फियर है, गिल्ट फीलिंग है। ऐसे इमोशंस हम सबके मन को पूरे दिन कभी कभी तंग करते हैं। तो क्यों ना इन इमोशंस के बारे में हम बात करें और एक ऐसा उपाय ढूंढें कि हम इमोशंस पर कंट्रोल करें तो हमारी जिंदगी सुखमयी हो जाएगी। एक ऐसा ही बहुत इंपॉर्टेंट इमोशन है तनाव, स्ट्रेस, जो आज हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है। आज हम चर्चा करेंगे स्ट्रेस के बारे में। हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर गिरीश पटेल को। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
नमस्कार।
डॉक्टर साहब एक फेमस साइकोथेरेपिस्ट हैं और पिछले 30 वर्षों से मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं ब्रह्मा कुमारीज के साथ। तो डॉक्टर साहब, स्ट्रेस के विषय में आपके साथ हम अपनी चर्चा जारी रखेंगे। हम पहले आपसे पूछना चाहेंगे कि स्ट्रेस आखिर होता क्या है?
आज देखो तो दुनिया में हर एक को, छोटा बड़ा, गरीब अमीर, सभी को कोई ना कोई रूप से टेंशन है। करीब 3 साल पहले मैं किताब लिख रहा था, स्ट्रेस फ्री लिविंग इन 21st सेंचुरी। तो करीब 4-5 घंटा लिखने के बाद मैंने सोचा कि थोड़ा रिलैक्स होना चाहिए। तो जब फ्लैट से बाहर आया तो करीब 2.5-3 साल का बच्चा खेल रहा था। मैंने मन को हल्का करने के लिए उसे बात करना शुरू की तो अंकल मुझे डिस्टर्ब नहीं करो, मैं बहुत टेंशन में। तो तभी मुझे लगा कि देखो, इतना छोटा सा बच्चा भी न जाने उसको क्या टेंशन,
मतलब हर व्यक्ति को, चाहे बड़ा हो चाहे बूढ़ा हो, किसी न किसी प्रकार का तनाव जरूर होता है।
और वर्तमान समय भी ऐसा आया है। वास्तव में कहते हैं कि 17वीं सदी वो विश्वास की सदी थी, कि तब सभी को कोई न कोई रूप से आध्यात्मिकता में विश्वास था, फेथ था। 18वीं सदी को तर्क की सदी माना गया है, कि तब लॉजिकली सोचने लगे, साइंटिफिकली सोचने लगे। 19वीं सदी को प्रगति की सदी माना है, कि तब साइंटिफिक प्रोग्रेस हुआ। और 20वीं सदी को कहा है कि स्ट्रेस की सदी है, एज ऑफ टेंशन। और अब हम 21वीं सदी में तो टेंशन और भी बढ़ रहा है। अगर हम आंकड़ों को भी देखें, स्टेटिस्टिक्स को देखें, तो भी आने वाले 12-13 वर्षों में डिप्रेशन सेकेंड कॉमनेस्ट बीमारी हो जाएगी। हार्ट डिजीज के बाद सबसे ज्यादा लोग डिप्रेशन के शिकार होंगे। तो इट कैन बिकम एज ऑफ डिप्रेशन। ऐसा भी कहा गया है कि तनाव इतना बढ़ेगा कि 21वीं सदी वह एज ऑफ पैनिक बन जाएगी।
फियर, हर व्यक्ति में किसी न किसी प्रकार का डर बैठा हुआ है,
और एवरी टाइम नो यू विल हैव अ सॉर्ट ऑफ अ पैनिक।
तो डॉक्टर साहब, एक बात ये बताइए कि तनाव हम सबके अंदर है, आपके अंदर है, मेरे अंदर है, मैं समझता हूँ जो दर्शक देख रहे होंगे किसी न किसी प्रकार के तनाव से ग्रसित होते हैं।
बिल्कुल।
लेकिन तनाव क्या होता है? हर व्यक्ति कई बार यही नहीं समझ पाता कि क्या मुझे स्ट्रेस है। वो उसके पॉजिटिव चीज को ही लेकर चलता रहता है कि नहीं नहीं, ये एक नॉर्मल रूटीन बन जाता है। तो तनाव एक आम व्यक्ति के लिए स्पष्ट होना बहुत जरूरी है, क्या आप बताना चाहेंगे?
हेंसेल, जिन्होंने काफी बेसिक रिसर्च की है, जिनको हम भीष्म पितामह भी कहेंगे स्ट्रेस की रिसर्च का, तो उन्होंने प्राणियों पर काफी प्रयोग किए, मानव पर भी कुछ प्रयोग किए, और फिर यह बताया कि स्ट्रेस इज अ नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू द डिमांड मेड अपॉन इट।
डॉक्टर साहब, ये मुझे और आपको तो अच्छी तरह समझ में आ गया, लेकिन एक आम व्यक्ति जिसको साइंस के बारे में या इतनी साइंटिफिक लैंग्वेज नहीं मालूम, उसको तनाव कैसे स्पष्ट किया जाए?
नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा मोहित, कि मैं भी अपने प्रवचनों में बताता हूं कि स्ट्रेस क्या है, कि स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ द सिचुएशन डिवाइडेड बाय कोपिंग एबिलिटी।
जी,
तो दो पहलू है, एक तो परिस्थिति का प्रेशर है, वो जितना ज्यादा होगा उतना तनाव अधिक होगा। और दूसरी बात है कि आप उसका सामना कैसे करते हैं, उसकी जो कोपिंग स्किल्स है वो आपकी कितनी है।
जी,
भल हम प्रेशर को शायद कम न कर सके, परंतु कोपिंग स्किल्स को बढ़ा सके तो भी तनाव नहीं होगा।
मतलब आप ये कहना चाहें कि परिस्थिति कोई भी आती है, तो परिस्थिति के आगे अगर हमारी स्वस्थिति ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा एनर्जेटिक है, तो परिस्थिति डाइल्यूट हो जाती है, या हमारी अपने कोपिंग स्किल्स, हम यानी अपनी स्वस्थिति को और एनर्जेटिक पावरफुल बनाए तो स्ट्रेस हमें कम होगा।
ठीक कहा आपने।
लेकिन क्या ये इतना सिंपल, ये हर स्ट्रेसफुल सिचुएशन को एक्सप्लेन करता है? कई बारी किसी व्यक्ति को दुख है, कई बारी खुशी है, क्या सिर्फ नेगेटिव चीजें ही स्ट्रेस दे सकती हैं?
नेगेटिव चीजें स्ट्रेस देती है ऐसा नहीं, एक और सिंपल डेफिनेशन भी हमको देखनी चाहिए
जी।
ये जो मैंने बताया वह समझाने के लिए मनोविज्ञान की दृष्टि से ठीक है, परंतु अगर आम व्यक्ति को पहचानना है
वर्किंग डेफिनेशन,
हाँ, कि भी कब कब मुझे तनाव है, अगर इस बात के बारे में सोचना हो तो मैं और एक बहुत ही सरल सी डेफिनेशन देता हूं कि तनाव कोई भी बाह्य या आंतरिक परिस्थिति है कि जिसका शरीर या मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। हर एक शब्द महत्वपूर्ण है, तनाव सिर्फ बाह्य नहीं है, तनाव आंतरिक भी होता है कि जब हमें ईर्ष्या होती है किसी की, बल बाहर से कुछ नहीं दिखाई देता, परंतु जब भी आप में ईर्ष्या का भाव निर्माण हो रहा है वह तनाव है
जी।
जब बदले की भावना अंदर में निर्माण हो रही है तो वह भी तनाव है। और दूसरी बात कि तनाव सिर्फ दुखमय परिस्थितियां नहीं है, अचानक जब कोई खुशी आ जाए तो वह भी टेंशन है। आपने भी देखा होगा कि मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट होती है, जब नाम अनाउंस होता है तब देखा होगा ना क्या होता है, आंसू आ जाते हैं, हाँ, या तो ब्लैकआउट हो जाता है। तो इसलिए अचानक खुशी का अनुभव करना वह भी एक टेंशन है।
ये तो एक एग्जांपल, या अभी आपने बताया कि एक क्रिकेट मैच भी जैसे हुआ था, फाइनल हुए थे, तो उसमें एक्साइटिंग सिचुएशंस जब आ जाती हैं तो लोगों को हार्ट अटैक तक पड़ जाता है, ये कई बार न्यूज में भी दिखाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बताइए कि क्या तनाव जो है हमारे ऊपर प्रभाव डालता है, ये तो हमें मालूम है, लेकिन किस प्रकार से हमारे शरीर को इफेक्ट करता है या हमारे मन को इफेक्ट करता है?
पहले तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि तनाव हमारे शरीर में, कहते हैं कि 75 ट्रिलियन कोशिकाएं हैं, तो ये जो 75 ट्रिलियन कोशिकाएं प्रत्येक पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, तो इसलिए वह शरीर पर तो बुरा प्रभाव डालता ही है, परंतु साथ साथ मन पर भी उसकी नेगेटिव इफेक्ट होती है।
शारीरिक रूप में देखा जाए, हमारे शरीर के डिफरेंट अंग हैं, उन पर क्या तनाव प्रभाव डालता है?
नहीं, बिल्कुल डालता है, और जो मेजर अंग है, जैसे कि तनाव की तुरंत जो इफेक्ट है वो हमारे हार्ट पर है। आप मेरे से भी अच्छा जानते इस बात को,
हार्ट अटैक तो हम जानते हैं,
हार्ट अटैक तो है ही, परंतु हार्ट के ऊपर इमीडिएट थोड़ा भी आपने टेंशन लिया, हार्ट पर बुरा असर होता है। कहते हैं कि भी हार्ट घोड़े जैसा है और मन हमारा घुड़सवार है, तो घुड़सवार चाबुक मारेगा, घोड़ा फास्ट दौड़ेगा। तो इसे मन में थोड़ा भी टेंशन आया तुरंत हार्ट पर इफेक्ट होती है,
पहला चाबुक हार्ट पे पड़ता है, और लोग कहते हैं कि दिल तेज धड़कने लग जाता है, पैल्पिटेशंस हो जाती हैं,
होती है। दूसरी तुरंत इफेक्ट होती है हमारे पाचन तंत्र पर, तनाव के कारण या तो पूरी भूख मर जाएगी या ज्यादा ही भूख लगेगी, व्यक्ति बार बार खाता रहेगा, विशेष रूप से महिलाएं जो घर में ही होती है, और जब भी उन्हें टेंशन है क्योंकि खाना वहां प्राप्त है तो बार बार खाती रहती है, वही तनाव की प्रक्रिया,
और ये अपने आप में और एक सिंड्रोम दे देता है, ओबेसिटी आ जाएगा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो जाता है,
एसिडिटी हो सकती है,
शुगर की बीमारी भी बताया गया है कि तनाव के कारण। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो हमें मालूम है कि तनाव जिन व्यक्तियों को होता है उनमें एजिंग जल्दी होती है, जिसे कहते हैं अल्जाइमर्स नाम की डिजीज, जिसमें ब्रेन को कहते हैं खत्म हो जाना ब्रेन का जल्दी, वो जल्दी।
तो उसका भी कारण क्या है, क्योंकि तनाव की दिमाग पर असर है। और कैसे कि जो सूक्ष्म रक्त वाहिनियां है दिमाग में, वो सूक्ष्म रक्त वाहिनियों पे या तो ब्लड का फ्लो है वो कम हो जाएगा, वह शायद सिकुड़ जाएगी, कंस्ट्रिक्ट होगी, और दूसरा यह भी होता है कई बार तनाव के कारण, जैसे कि गुस्सा है तो वह सूक्ष्म नलिकाएं फूट भी सकती है, बल तुरंत हमें पता नहीं चलता है, यहां तक कि तनाव के कारण आर्थराइटिस भी हो सकता है,
आर्थराइटिस, एस्थमा जैसी बीमारियां भी बताई गई,
एस्थमा में भी इमीडिएट जो इफेक्ट है वो तनाव की।
डॉक्टर साहब, एक बात में ये जो बड़ी स्पष्ट है, मेरे तो रोंटे खड़े हो गए हैं सुन सुनकर, कि तनाव जो है हमारे जीवन को प्रैक्टिकली डिस्ट्रॉय कर देता है, अगर हम इसको लंबे समय तक अपना साथी बना के रखे तो इस वक्त या तो लगता है कि या तो हम तनाव को छोड़ें या वो हमें छोड़ के एकदम भागे।
इससे एक वो प्रेरणा लेनी चाहिए,
प्रेरणा लेनी चाहिए, और मैं समझता हूँ कि जो हमारे दर्शक देख रहे होंगे वह समझ रहे होंगे कि कितना जरूरी है तनाव को अपने जीवन से हटाना। अच्छा डॉक्टर साहब, जो अगली चीज, अगला प्रश्न जो मेरे दिमाग में उठता है वो ये उठता है कि तनाव आखिर कितने प्रकार का होता है? क्योंकि मैं समझता हूं हर व्यक्ति किसी ना किसी प्रकार के तनाव से ग्रसित है, लेकिन किस फॉर्म में, उसके लिए वह तनाव क्या है, यह पहचानना बहुत जरूरी है।
बड़ा अच्छा प्रश्न है, और इसमें अगर आप अलग अलग एक्सपर्ट्स को यह प्रश्न पूछे
जवाब
हो सकता है कि वह उसका जो डिवीजन है, जो प्रकार है, उसको अलग रूप से डिवाइड कर सकते हैं। मैं एक सरल रूप से आपको उस तनाव के प्रकार बताता हूं, जो आम व्यक्ति भी इसको पहचान पाएगा। वो तीन प्रकार के है। एक तो तनाव शारीरिक होता है कि जब शरीर पर कोई दबाव आया, आप बीमार हो गए, बुखार हुई, तो तब आपको तनाव होगा। दूसरा है मानसिक तनाव
जी,
कि जो चिंता, निराशा, जलसी, बदले की भावना, ऐसी जो हम हमारी मन की अलग अलग अवस्थाएं हैं, उसके कारण तनाव होता है। और तीसरा प्रकार कहेंगे सामाजिक तनाव,
सोशल स्ट्रेस।
हाँ, बहुत सारी सामाजिक परिस्थितियां हैं कि जिस सामाजिक परिस्थितियों में अगर मित्रों से हमें अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता है
जी।
तो इस प्रकार की जो बातें, वह भी सामाजिक रूप से तनाव पैदा करती है। और हम थोड़ा सा इसको बता सकते हैं। एक तो कहते तनाव रियल है कि रियल आपके सामने कुछ ना कुछ परिस्थिति है, और दूसरा जिसे कहा एंटीसिपेटरी स्ट्रेस कि व्यक्ति भविष्य का सोच करके तनाव में आता है। एक सरल सा उदाहरण देता हूं
जी।
कि अगर बच्चा स्कूल से 6 बजे आने वाला है और अगर 6:15 भी बज गए तो मां टेंशन में आ जाती है। क्या होता है भी कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया होगा,
नेगेटिव
चीज है। हाँ, आजकल सुनते भी किडनैप तो नहीं कर लिया होगा, तो पहले ही वह एंटीसिपेशन कि भी क्या होगा वो सोच करके व्यक्ति तनाव में आ जाता है।
डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि फिजिकल स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस है, सोशल स्ट्रेस है, मैं समझता हूं कि फिजिकल और जो सोशल स्ट्रेस है, ये सब भी एक प्रकार से हमारे मानसिक तनाव को ही बढ़ावा देते हैं। मानसिक रूप में ही अल्टीमेटली इफेक्ट आता है। जैसे आपने बताया कि एंटीसिपेटरी स्ट्रेस है, अक्सर लोग भविष्य की चिंता में, हर व्यक्ति आज ये सोच रहा है कि कल क्या होगा, एक अनसर्टेनिटी में हम लोग जी रहे हैं, और ये अनसर्टेनिटी मेरे अंदर, आपके अंदर, मैं समझता हूं हमारे सब दर्शकों के अंदर ये तनाव जरूर लाती होगी।
बिल्कुल,
ऐसे ही कुछ लोग हैं जो पुराना ही सोचते रहते हैं, उसके बारे में आप
हाँ, ये भी बात है। जैसे एंटीसिपेटरी स्ट्रेस है, ऐसे ही भूतकाल का सोच सोच करके, पास्ट की बातों को लेकर के भी हम टेंशन
हम
में
बैठे ही
आते
रहते हैं।
हाँ, और उसकी इफेक्ट डिफरेंट है। जब भविष्य के बारे में हम सोचते हैं तो व्यक्ति डरता है, और जब भूतकाल के बारे में हम सोचते हैं तो हम यह विचार करते हैं कि मैंने बहुत बुरा कर दिया, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था, एक पाप की भावना आती है। तो इसलिए दोनों अलग अलग डिफरेंट इफेक्ट करते हैं मन पर, और वह बहुत बड़ा टेंशन। कहते हैं कि पास्ट वह कैंसल चेक जैसा है और फ्यूचर वो प्रॉमिसरी नोट है, पक्का नहीं कह सकते कि वो पैसे आपको मिलेंगे, लेकिन वर्तमान वो रियल करेंसी है। आपके पॉकेट में 100 रुपये भी है तो आप कुछ खरीद सकते हैं, 2000 रुपये की प्रॉमिसरी नोट कोई काम की नहीं है। तो इसे वर्तमान जैसा भी है समझना चाहिए कि भगवान की एक सौगात है और मैं खुश हूं, और हर पल को वर्तमान में बिताना भी कोई अच्छी तरह से सीख ले तो सचमुच न केवल व्यक्ति तनाव मुक्त बनेगा परंतु उसकी कार्यक्षमता भी बढ़ेगी। 21वीं सदी में कंपटीशन बहुत है, तो कंपटीशन में आपको वर्किंग एफिशिएंसी को भी बढ़ाना है, वह तब होगा अगर आप वर्तमान में जीना सीखे।
30 वर्षों से आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते रहे हैं।
हाँ जी।
तो मैं समझता हूँ कि यही एक मेडिटेशन है, एक ऐसा अस्त्र है हमारे, ब्रह्मास्त्र जिसे हम कहेंगे, जो हम इस तनाव को अपने जीवन से हटा सकते हैं, एक लाइफ में एक बैलेंस ला सकते हैं।
कहते हैं कि मेडिटेशन इज ब्रिंगिंग माइंड बैक होम, कि मन को वापस इस समय में अभी क्या कर रहा हूं, तो उसी में मन को ले आना, वह बेसिकली मेडिटेशन है।
ये आर्ट और ये टेक्निक तो डॉक्टर साहब हम और हमारे दर्शक आपसे जरूर सीखेंगे, क्योंकि यही असली आज हर व्यक्ति को जरूरत है। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि अक्सर हमने आपको आपके पुराने लेक्चर्स में भी कहते सुना है कि मानव शरीर की जो संरचना है उसमें कुछ ना कुछ गलती हुई है, क्या स्ट्रेस का जो इफेक्ट है वह बॉडी पर एकदम नहीं आता है, तो क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में?
मैं इसलिए कहता हूं, जैसे प्रवचनों में हमारा लक्ष्य यह होता है कि लोगों को प्रेरणा मिले, अन्यथा मैंने देखा है कि परिवर्तन नहीं आता। भले 4 दिन की भी वर्कशॉप अटेंड कर ले व्यक्ति, लेकिन वो अपने जीवन शैली में परिवर्तन नहीं लाता है। तो इसके कारण मैं ये बताता हूं कि जब भी मानव शरीर की रचना हुई तो भगवान ने गलती की है। अगर वो गलती नहीं की होती तो तो इस टॉक शो की भी जरूरत नहीं थी, मेरे जैसे जो साइकोथेरापिस्ट है साइकियाट्रिस्ट है उनकी भी जरूरत ही नहीं पड़ती। कि क्या गलती हुई है कि जब जब भी आपको तनाव आए, जैसे मैं आपके बारे में ईर्ष्या का विचार करूं तुरंत सरदर्द हो गया, अगर मुझे अगर गुस्सा आया हार्ट में पेन शुरू हो गया
तो वो रखेंगे
तो हाँ तो तुरंत नहीं। आज नहीं, कई लोग होते हैं कि भी जो चाय पीते हैं उनको सरदर्द हो जाता है तो चाय पीना बंद कर देता है जी। तो ऐसे ही अगर यह होता, परंतु ऐसा नहीं हुआ है, है ना। कुदरत तो ने यह सोचा होगा कि भी मानव को तो जरूरत है, अगर ऐसा हो जाए तो कोई काम नहीं कर पाएगा
जी।
इसके कारण आवश्यकता से करीब 4 से 5 गुना ज्यादा कैपेसिटी हमारे शरीर के अवयवों को दी है। जैसे हमारे गुर्दों का ही उदाहरण हम ले ले,
सहन करने की जो दी है।
हाँ, या तो जो हमारी किडनीज है वो अगर 25% भी काम कर रही है, एक किडनी मैं डोनेट कर दूं किसको, दूसरी किडनी भी अगर आधी भी काम कर रही है तो मुझे कोई बीमारी के लक्षण नहीं होंगे। जब उससे भी कमी आती है तब बीमारी के लक्षण होते हैं। और ऐसा ही हमारे हार्ट के साथ भी है, सभी ऑर्गन्स में बहुत ज्यादा कैपेसिटी है तो इसके कारण इमीडिएट इफेक्ट नहीं होती।
क्या तनाव का कोई स्पिरिचुअल या साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी है?
जब जब भी हमें थोड़ा भी तनाव जो हम फील करते हैं वह तो आगे की स्टेज है कि भी हमें दुख की फीलिंग होती है या निराशा की फीलिंग होती है, बस आप सिर्फ सोच रहे हैं, ईर्ष्या के बारे में आप सोच रहे हैं, अंदर में थोड़ा सा बुरा फील कर रहे हो, नेगेटिव थोड़ा सोच रहे हो, तो तब भी पहले तो उसकी आत्मा पर इफेक्ट होती है, वो ओरिजिनेट तो आत्मा में ही होती है, परंतु जैसे आत्मा से ओरिजिनेट हुई तो जो हमारी एनर्जी फील्ड है वो एनर्जी फील्ड पर उसका प्रभाव पड़ता है। और सभी में इसको माना गया, अगर हम सिस्टम्स को भी देखें तो भारत में आयुर्वेद में इसको प्राण शक्ति कहा, होम्योपैथी में इसे वाइटल फोर्स कहा गया, जो चाइनीज मेडिसिन है एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर आदि जिसमें कहते कि ची एनर्जी है, मेरिडियंस है।
आपका अपना जो मेडिटेशन का एक्सपीरियंस है उसमें आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे?
पहले तो थोड़ा मैं ये भी स्पष्ट करूं कि मॉडर्न मेडिसिन में भी अगर देखो तो भी आज क्रिलियन फोटोग्राफी के द्वारा हम ह्यूमन एनर्जी फील्ड के फोटोग्राफ्स भी ले सकते
बिल्कुल हैं।
कि जिसमें राइट लेफ्ट और टॉप में अलग अलग लेयर्स दिखाई देती है, अंदर की जो हमारी रचना है उसमें भी परिवर्तन आता है, और उसके आधार से हम ये भी बता सकते हैं कि भला आज आपको कोई बीमारी नहीं है परंतु 5 साल के बाद ये बीमारी आपको हो सकती, यहां तक 5 साल भी नहीं है कि भी 15 या 20 साल के बाद आपको ये बीमारी होगी। जैसे डायबिटीज के बारे में अगर विचार करें कि जो कॉमन बीमारी हो रही है, तो फिजिकल टेस्ट के द्वारा भी 12 साल पहले हमें यह पता चलता है, फिजिकल बॉडी में परिवर्तन आता है। जैसे कि एक है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट,
इसी तरह आप ये कहना चाहते हैं कि हम पता लगा सकते हैं कि आगे ये प्रॉब्लम हो सकती है।
तो फिजिकल में यह है, परंतु मैं ये बताना चाहता हूं कि ऑरा में उससे भी पहले परिवर्तन
आ जाता है,
तो इसके कारण तनाव से पूरी तरह से मुक्त होना चाहिए।
और मैं देखता हूं कि कई बार आम लैंग्वेज में हम कह भी देते हैं कि भाई ग्लो आपके अंदर से खत्म हो गया, या क्यों ऐसे ढीले ढीले से लग रहा है।
वह बाह्य बात हुई, अगर आध्यात्मिक रूप से विचार करें, आप ये पूछ भी रहे थे, तो आत्मा की स्थिति में थोड़ा भी फर्क पड़ता है तो वो ऑरा पर इफेक्ट करता है, और ऑरा पर असर हुई तो आगे चल करके फिर हमारे जो बॉडी के केमिकल्स है न्यूरोट्रांसमीटर से उस पर इफेक्ट होगी, और फिर अंत में हो सकता है कि 15 साल 20 साल के बाद आपको शारीरिक बीमारी होगी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि मेडिटेशन सबसे जरूरी है जीवन में, थोड़ा भी करो परंतु मेडिटेशन का अभ्यास जरूर करो ताकि ये जो मूल है बीमारियों का उस मूल को आप दूर कर सके।
डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही स्पष्ट रूप से हमें बताया है कि तनाव क्या होता है, तनाव कितने प्रकार का होता है, और किस तरह तनाव हम सबके शरीर को हमारे मन को शिथिल कर सकता है, खत्म कर सकता है। और आपने यह भी बताया कि तनाव को अगर हमें जीतना हो तो मेडिटेशन एक बहुत प्रैक्टिकल टूल है। अगर आप और हम मेडिटेशन सीखना चाहते हैं और तनाव के बारे में कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग बातें, रोचक बातें सुनना चाहते हैं, तो हम कल अपनी चर्चा जारी रखेंगे डॉक्टर गिरीश पटेल के साथ। तब तक के लिए हम आपसे आज्ञा लेंगे। नमस्कार।
I'm a peaceful soul। Sound, oh, shanti, oh.
नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे प्रोग्राम माइंड मैटर्स में। जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपने पिछले एपिसोड में डॉक्टर गिरीश पटेल के साथ चर्चा की तनाव के विषय में। तनाव क्या होता है, तनाव के कारण क्या होते हैं और तनाव किस तरह हमारे शरीर पर प्रभाव डालता है। तो आज हमने अपने स्टूडियो में फिर आमंत्रित किया है डॉक्टर गिरीश पटेल को, जो कि एक साइकोथेरेपिस्ट है और एक मेडिटेशन एक्सपर्ट है, और हम अपनी चर्चा जारी रखेंगे डॉक्टर गिरीश पटेल के साथ तनाव के कुछ ऐसे ही नए एस्पेक्ट्स के बारे में। डॉक्टर साहब, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि तनाव जो है ये हमारे शरीर पर प्रभाव डालता है, मन पर प्रभाव डालता है, ये तो हमारे समक्ष बिल्कुल स्पष्ट है, पर किस तरह डालता है, यह एक प्रश्न जो है, ये अगर हमारे सामने क्लैरिफाई, हमारे दर्शक समझ पाए इसको, तो शायद उनके अंदर मोटिवेशन होगी कि तनाव को अपने अंदर से भगाया जाए।
मतलब आप चाहते हैं कि मैकेनिज्म्स
ऑफ स्ट्रेस,
अलग अलग रीति से इसको हम समझा सकते हैं। अगर बहुत सरल भाषा में आम व्यक्ति को भी समझाना हो तो शरीर में हमारी दो प्रकार की प्रणाली है। एक तो प्रणाली है जो हमारे नियंत्रण में है, जिसको वॉलेंटरी सिस्टम कहेंगे, कि हाथ पैर को ऊपर नीचे करना वह हमारे नियंत्रण में है, और दूसरी प्रणाली है जिसको कहते हैं इनवॉलेंटरी सिस्टम, जैसे कि पाचन क्रिया, हृदय की गति, किडनी का फंक्शन, कि जो आप सो गए तब भी वह चलता ही रहता है, तो वह एक दूसरी प्रणाली है
जी।
तो तनाव का सबसे बड़ा प्रभाव यह जो इनवॉलेंटरी सिस्टम है उस पर पड़ता है
जी।
और उसकी जो क्रियाएं हैं उसको भी हम दो रूप से समझ सकते हैं। एक तो यह जो आंतरिक अवयव है वह संतुलित रूप से कार्य करने चाहिए
जी।
समस्या तब होती है जब उसमें असंतुलन आता है, तो हमारे शरीर में उससे संतुलन निर्माण करने के लिए एक प्रणाली है जिसको कहा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। मतलब सिंपल भाषा में कि भी ऑटोमेटिक वो काम करती है, इसके कारण कहा ऑटोनॉमिक। और ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो तराजू की तरह है, जैसे तराजू के दो पलड़े होते हैं ऐसे उसमें भी दो पलड़े हैं, या तो कहेंगे दो स्विच है
जी।
जैसे एक स्विच को अगर आप प्रेस करो तो एक प्रकार की सारी गतिविधियां होगी, जैसे कि हृदय की गति बढ़ जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, एसिड ज्यादा निर्माण होने लगेगा, डाइजेशन बंद हो जाएगा, यूरिन का फ्लो बढ़ जाएगा, ऐसे सारी क्रियाएं होगी, कि जिसको सिंपैथेटिक सिस्टम कहा। वास्तव में उसको कहा सिंपैथेटिक, लेकिन वो अनसिंपैथेटिक है, वो बहुत सारी बीमारियां करती है। और दूसरी है जिसको कहा पैरासिंपैथेटिक सिस्टम, वो उसको बैलेंस करने के लिए है, कि अगर वो थोड़ी सी ज्यादा कार्य करे तो हृदय की गति कम होगी, ब्लड प्रेशर कम होगा, डाइजेशन आपका ठीक से होने लगेगा, ऐसे जो सारी विपरीत क्रियाएं वह होगी। और तनाव से सबसे बड़ी बात यह संतुलन है वह बिगड़ जाता है।
तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि शरीर भी एक गाड़ी की तरह है, जो प्रक्रिया है उसमें एक्सेलरेटर भी है और ब्रेक भी है, तो एक प्रणाली जो है वो एक्सेलेटर की तरह काम कर रही है, बढ़ा रही है, और दूसरी प्रणाली जो है वो ब्रेक की तरह काम कर रही है, और जो इसको हम कहें वो बैलेंस है, एक अच्छा ड्राइवर जो है वो बैलेंस मेंटेन करेगा, और तनाव जो है वो इसमें बैलेंस को बिगाड़ देता है, कभी एक्सेलेटर को दबा देगा या कभी ब्रेक को कर देगा।
परफेक्ट आपने उदाहरण दिया कि भी वर्तमान 21वीं सदी में हमारा पैर सारा समय एक्सेलरेटर पर है,
सब
ब्रेक लगाना भूल गए, समझो कि ब्रेक फेल हो गई है।
और एक अच्छा ड्राइवर वो होता है जिसे एक्सेलेटर और ब्रेक का
बैलेंस रखना होता है, और ये भी ना हो कि ब्रेक फेल हो गई तो एक्सीडेंट होना ही होना है। आज ऐसी स्थिति हो गई,
तनाव जो है वो इस बैलेंस को खराब।
एक ईयर जो मैकेनिज्म आपने पूछा, दूसरी एक बहुत ही अच्छी सूक्ष्म मैकेनिज्म है। आपने भी सुना होगा कि हमारे शरीर में अलग अलग ग्रंथियां हैं, जैसे गले में थायराइड की ग्रंथि, उसके बाजू में छोटी सी पैराथायराइड की ग्रंथि है, या मस्तिष्क में पिट्यूटरी की ग्रंथि है।
मैं समझता हूँ हमारे दर्शक भी जानते ही हैं, थायराइड तो सबको मालूम है यहाँ पर होता है, पिट्यूटरी यहाँ पर होता है,
ये बीमारी थायराइड की बीमारी जो बहुत हो जाती है, इसके कारण सभी जानते हैं। आज डायबिटीज की बीमारी इतनी फैल रही है, तो पेनक्रियास की जो पूंछ है वो पूंछ से इंसुलिन निर्माण होता है, ऐसे हमारी किडनी के ऊपर दो एड्रिनल ग्लैंड्स है कि जो भी एक पावरफुल हॉर्मोन्स निर्माण करती है, पुरुषों में टेस्टिस और महिलाओं में ओवरीज, वो भी अलग अलग ऐसे रसायन निर्माण करते हैं जो सीधे खून में चले जाते हैं, और इसका संतुलन बहुत जरूरी है
जी।
ये जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनको ऑर्केस्ट्रा के साथ भी तुलना की गई, कि ऑर्केस्ट्रा में एक इंस्ट्रूमेंट में भी थोड़ा भी आगे पीछे हो तो सारा ऑर्केस्ट्रा का मजा खत्म हो जाएगा। तो जब थोड़ा भी तनाव होता है, नहीं थोड़े भी आप निराश हुए, थोड़ा भी आपको अनप्लेजेंट फीलिंग हुई कि भी अच्छा नहीं हुआ ऐसा आपको लगा, तो तब भी असंतुलन शुरू हो जाता है और वो असंतुलन के कारण अनेकानेक बीमारियां हैं, वह बीमारियां हमको हो सकती है। और एक सूक्ष्म मैकेनिज्म है कि हमारे ब्रेन में बहुत सारे केमिकल्स हैं और जैसे जैसे समय बीतता जाता है हम नए नए केमिकल्स को जान पाते हैं
जी।
हाँ, मुझे भी आश्चर्य हुआ कि जब मैं पढ़ रहा था तब हमने पढ़ा था कि दिमाग करीब 50 केमिकल्स निर्माण करता है, लेकिन फिर 1993 में जब मैं और एक किताब पढ़ने लगा तो उसमें आया कि दिमाग तो 300 केमिकल निर्माण करता है, और 2000 में फिर एक स्टडी फिर से पढ़ी तो उसमें आया कि दिमाग 800 से ज्यादा केमिकल निर्माण। इसका मतलब कि नए जो सूक्ष्म रसायन है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स को साइंटिस्ट पहचान पा रहे हैं और उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है
जी।
थोड़ा सा भी अंदर में हमें चिंता हो, टेंशन हो और कोई बात है तो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स को बिगाड़ देता है और उससे अनेकानेक जो शारीरिक बीमारियां हैं वह भी आगे चल के हो सकती है
जी। ये तो आपने जैसे बताया, इसको हम एक आम व्यक्ति के लिए बताया जाए कि एक ऑर्केस्ट्रा है, तो हमारा जो मन है वो उसका कंट्रोलर है।
हाँ,
उसमें दिखाते हैं
मास्टर
करके, मास्टर करके वो ऑर्केस्ट्रा बजवा रहा होता है, तो कहां पर भी हमारा मन का कंट्रोल वो बिगड़ जाए, एक तनाव अगर मन में आ जाए तो ट्यूनिंग जो है वो खराब हो जाती है और अलग अलग ग्रंथ जो है अलग अलग राग बजा रहे होते हैं और बॉडी का जो सिस्टम है पूरा डिसऑर्गेनाइज हो जाता है।
बहुत अच्छा आपने समझाया कि वो मास्टर ने जो सिग्नल दिया कहीं भी गड़बड़ हो गई तो पिकअप नहीं करेंगे।
बिल्कुल। और डॉक्टर साहब ये बताइए, जो ये तनाव है क्या ये हमारे बॉडी पर प्रभाव डालता है? इसके बारे में हमने आपसे चर्चा की थी, अलग अलग ग्रंथों पर, अलग अलग प्रणालियों पर डालता है प्रभाव। क्या इससे सडन डेथ भी हो सकती है, अचानक मृत्यु?
नहीं, कई ऐसे उदाहरण हैं कि जिसमें अचानक डेथ भी हो सकती है।
अचानक?
हाँ, मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं और ये पावरफुल है कि भी जिससे हम ये समझ पाएंगे कि मन कितना इंपॉर्टेंट है। अफ्रीका के कुछ इलाकों में ऐसी मान्यता है कि जंगली मुर्गी का मांस खाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो एक व्यक्ति अपने मित्र के पास गया, उसने उसे कहा कि तू जंगली मुर्गी का मांस खाएगा? तो कहते हे, तुझे पता नहीं है इसमें तो श्राप होता है, ऐसा मांस खाने से व्यक्ति मर सकता है। तो मित्र जोर जोर से हंसने लगा। हंसते हंसते उसने कहा कि बुद्धू, एक साल पहले तू मेरे पास आया था, तब मैंने तुझे यही मांस खिलाया था, बड़े मजे से तू खा गया था, और अभी कहता है कि इसमें श्राप होता है। जैसे उसने ये सुना वह कांपने लगा, पसीना पसीना हो गया, 4-5 मिनट में तो उसकी मृत्यु हो गई। तो किसने उसको मारा? मन ने मारा, उसकी मान्यता ने मारा। अगर सचमुच उसमें श्राप होता तो एक साल पहले मरना चाहिए था
जी।
इसके लिए साइंटिस्टों ने विशेष नाम भी दिया जिसको कहते हैं वूडू डेथ, भी जादू टोना भी होता है भी, किसने मुझे जादू किया तो मेरी मृत्यु हो गई। तो ऐसे इसे वूडू डेथ भी कहा गया है
जी। इसको डॉक्टर साहब मैं भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल मुझे याद आती है कि कई अभी साइंस ने क्लियर दिखाया है कि एक्यूट जो स्ट्रेसफुल सिचुएशंस होती हैं, एक्यूट तनाव की जो सिचुएशंस होती हैं, उसमें हार्ट है उसका सडन डायलिटेशन हो जाता है, जिसे कहा जाता है कि बलूनिंग सिंड्रोम, जिसे कहा जाता है कि हार्ट की बलूनिंग हो जाती है, बलूनिंग सिंड्रोम। इसको टाकोत्सुबो कार्डियोमायोपैथी भी कहा गया है टेक्निकल लैंग्वेज में। और इस सडन स्ट्रेस से, ऐसी डायलिटेशन होने से व्यक्ति की सडन डेथ भी हो जाती है, और अगर व्यक्ति इससे कूप अप कर पाता है तो रिवर्सिबल भी होता है। तो ये तो मैं मानता हूं कि साइंस सब क्लियर प्रूव कर चुके हैं कि तनाव अटमोस्ट इफेक्ट यानी सडन मृत्यु भी व्यक्ति के अंदर ला सकती है। और ये एकदम रोंटे खड़े कर देने वाली बात है कि कितना जरूरी है मन को कंट्रोल करना।
हाँ, बिल्कुल। बस इन बातों को जब हम पढ़ते भी है तो ये सोचना चाहिए कि भी सचमुच थोड़ा सा भी तनाव ना हो,
थोड़ा सा
इसके लिए मुझे पुरुषार्थ करना है।
और सब मन की बात है, अपने मन को कैसे पावरफुल बना जाए, क्योंकि तनाव हमेशा परिस्थिति जैसे आती है बाहर से, तो स्वस्थिति जैसे हमने बात किया था, अगर हमारी अपनी स्टेज पावरफुल हो तो ऑटोमेटिकली हम तनाव से बच सकते हैं, उसको डाइल्यूट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा कि एक अमीर व्यक्ति है उसके पास तनाव होता है, क्या आप समझते हैं गरीबी भी एक प्रकार का तनाव है?
अच्छा, ये देखेंगे तो भी परिस्थिति है। गरीबी वो डिफिकल्ट सिचुएशन है
जी।
मैं हमेशा ये कहता हूं कि हमारी भाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है। कि भी गरीबी को हम तनाव ना कहे, उसको कहे कि ये डिफिकल्ट सिचुएशन है, अब उसके साथ आप कैसे डील करते हो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एग्जांपल मेरा अपना देखा हुआ ये एग्जांपल है
जी।
कि बंबई में दो भाई थे, एक भाई बहुत पैसे वाला था, एक भाई गरीब था। जो पैसे वाला भाई था वो हाई राइज बिल्डिंग में रहता था
जी।
जो गरीब भाई था वो छोटी सी चौल में रहता था। इस गरीब भाई के तीन बच्चे थे, तो तीनों की गरीबी के प्रति प्रतिक्रिया एकदम भिन्न होती थी
जी।
जो सबसे बड़ा था वो तो माता पिता को गालियां देता था कि भी जन्म क्यों दिया अगर आप हमको अच्छी तरह से पाल नहीं पाते थे, वो साइकोपैथ था। जो सबसे छोटा था वो सोचता था कि मेरे पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं है तो मैं क्या जीवन में करूंगा, तो वो कुछ पढ़ नहीं पाया। लेकिन जो बीच वाला था वो रात दिन पढ़ता था, जब और बच्चे खेलते थे तब भी वो पढ़ता था। जब और बच्चे पिकनिक पे जाएंगे तो वो पढ़ता था। आखिरी वह सर्जन बना और आज न्यूयॉर्क में सेटल्ड है। एक बार उसे ओरेशन अवार्ड मिल रहा था, तो तब ये मौका होता है जब ओरेशन अवार्ड मिलता है कि आप अपने जीवन के बारे में भी 2-3 मिनट बोल सकते हैं। तो तब उसने ये बात कही कि मैं इतना बड़ा सर्जन क्यों बना, क्योंकि मेरे माता पिता गरीब थे। अगर मेरे माता पिता पैसे वाले होते तो मैं भी शायद और चीजों में रुचि लेता और इतना अच्छा डॉक्टर नहीं बनता। तो इससे मैं ये बात स्पष्ट करता हूं कि गरीबी तनाव नहीं है, उस गरीबी में आप क्या करते वो इम्पोर्टेंट है। कहते कि आपके जीवन में क्या होता है वह महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु उस परिस्थिति में आप क्या करते,
मतलब आप किसी भी सिचुएशन को परसीव कैसे करते हैं या उसका हाँ। अपने ऊपर किस प्रकार का प्रभाव होने देते हैं
हाँ, वो एक बात है
जी।
और दूसरा कि भी उस परिस्थिति में इंग्लिश में अच्छा कह सकता हूं, कहते कि भी व्हाट हैपन्स टू इज नॉट इम्पोर्टेंट बट व्हाट यू डू विथ व्हाट हैपन्स टू इज मोस्ट इम्पोर्टेंट।
उस आप क्या करते हैं अपने हाँ, साथ जो आपको हो रहा है।
ये भी बहुत एक अच्छा कहा गया है कि भी आपके बाहर क्या है, आपके पीछे क्या है, नहीं आपके फ्रंट में क्या है, आपके बैक में क्या है वह महत्वपूर्ण नहीं है, आपके अंदर क्या है वह सबसे महत्वपूर्ण है कि जो आपके कंट्रोल में है।
अब इतनी जब हम बात कर लेते हैं कि हमारे अंदर जो हमारे मूल तत्व हैं, हमारा जो थिंकिंग प्रोसेस है वो कितना पावरफुल है, तो एक प्रश्न जो मेरे मन में उठता है, मैं समझता हूं हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि तनाव के बारे में ये सब जानने के बाद क्या तनाव से मुक्त होना सहज है?
ये तो मैं कहूंगा कि भी सहज नहीं है परंतु संभव जरूर है। देखिए लोग तो ये कहते हैं संभव ही नहीं, आप अगर एक्सपर्ट्स को भी देखो कहीं, अगर कहीं बार आप स्ट्रेस मैनेजमेंट की वर्कशॉप्स भी अटेंड करो तो वो यही कहेंगे कि भाई स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं लेकिन वो जीवन भर आपके साथ रहने वाला है, वो तनाव
खत्म नहीं। मैं आपसे एक बात अक्सर यहां पे पूछना चाहूंगा कि मुश्किल और संभव, संभव में भी एक ग्रेडेशन आ जाती है, रिमोट पॉसिबिलिटी और बहुत डिफिकल्ट पॉसिबिलिटी है। आप 30 साल से मेडिटेशन करते रहे, एक मेडिटेशन एक्सपर्ट माने जाते हैं, फेमस साइकोथेरेपिस्ट है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके अपने एक्सपीरियंस में अगर एक व्यक्ति स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आपके समक्ष आए तो क्या आप समझते हैं कि जिस प्रकार की मेडिटेशन या प्रिंसिपल्स आप प्रैक्टिस करते हैं उससे आप आसानी से तनाव से मुक्त नहीं तो काफी हद तक अपने जीवन को बैलेंस बना सकते हैं?
नहीं बिल्कुल, जो आपने ये बात बताई वो तो 100% पॉसिबल है, क्योंकि थोड़ा भी पुरुषार्थ किया
जी बिल्कुल, क्योंकि आम व्यक्ति जो देख रहा होगा, मैं नहीं समझता कि हर व्यक्ति के पास इतना समय होगा और वो चाहेंगे एक सिंपल टेक्निक, एक बेसिक ऐसे प्रिंसिपल जिससे उनकी लाइफ बहुत कंफर्टेबल हो जाए।
नहीं तो बिल्कुल है ना, ये बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है,
डिफिकल्ट
एकदम सहज नहीं है, परंतु थोड़ा भी पुरुषार्थ करो आप, अगर रोज आधा घंटा भी अपने आप के लिए देने लगो और कुछ ऐसी बातों को समझ लो कि स्ट्रेस को किस प्रकार से सही मैनेज करना है, बस समस्या तो आएगी ही परंतु बस वो आपके पास अगर फंडामेंटल स्टेप्स भी है और उसका सही समय पर सही रूप से उपयोग करने लगो तो सचमुच तनाव मुक्त भी हो सकते हैं।
तो नेचुरली डॉक्टर साहब आपने ये बताया तो मैं पूछना चाहूंगा कि आपके अकॉर्डिंग प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रेस फ्री लिविंग आप किन्हें मानते हैं? एक आम व्यक्ति के लिए जो जी रहा है, या आप कहो कि आज हम सब लोग एक्सेलेटर दबाए चले जा रहे हैं, तो उस एक्सेलेटर में से कौन कौन से ब्रेक्स आप बताना चाहेंगे या किस तरह आप क्लच ब्रेक और पैडल का बैलेंस बताना चाहेंगे कि हम सब लोग एक अच्छे ड्राइवर बन जाएं, हमारा मन जो है इस शरीर को चलाने वाला एक अच्छा ड्राइवर बन जाए, हमारी जो साइकी है, हमारी जो बीइंग है वो एक अच्छा ड्राइवर बन जाए।
अगर बेसिक और सिंपल स्टेप्स देखने हो, जैसे आपने कहा कि भी इजीली हो, तो मैं बताता हूं कि भी पांच सीज को अपनाओ,
फाइव सी,
फाइव, हाँ फाइव सी से स्टार्ट होने वाली बातें हैं। पहली तो है चैलेंज, दूसरा है कंट्रोल, तीसरा है कम्युनिकेट, चौथा है कोऑपरेट और पांचवा है कॉन्सेंट्रेट। बस ये पांच में से जो भी बात संभव हो, पांचों संभव नहीं हो सकती एक परिस्थिति में, लेकिन जो भी दो या तीन बातें आपके लिए संभव है वो आप करो तो आराम से आप इस पर विजय प्राप्त कर सकते
हैं। एक बात तो है कि अगर आप एक भी बात अपनाते हैं तो बाकी बातें ऑटोमेटिकली आती चली जाएंगी साथ में।
ये बात ये भी करेंगे तो
मैंने देखा है कि एक
हाँ।
अच्छे थॉट के साथ, एक अच्छे स्टेप के साथ एक चेन रिएक्शन हो जाता है।
हाँ।
तो इनका स्पष्टीकरण हम आपसे जरूर चाहेंगे। आपने बोला सबसे पहले चैलेंज,
तो ये जो पहली बात जरूरी है कि हम अधिकतर परिस्थिति से दूर भागते हैं। जब भी समस्या आती है तो सोचते हैं इसको अवॉइड करें, आए ही नहीं, परंतु कभी भी इसे अवॉइड नहीं करो, क्योंकि वर्तमान कॉम्पिटिशन का युग है
जी।
आप अवॉइड करने लगेंगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। और इसके लिए बहुत ही प्रेरणादायक उदाहरण स्वामी विवेकानंद का है
जी।
कहते हैं कि पहली बार जब विवेकानंद बनारस में गए तो वहां के कुत्तों ने जब देखा कि अजीब सा व्यक्ति यहां बनारस में आ गया है, तो कुत्ते उनके पीछे भागने लगे, वो भी भागने लगे, वो आगे भाग रहे, कुत्ते पीछे भाग रहे। गली के एक कोने पे जब वो टर्न ले रहे थे, एक वृद्ध व्यक्ति ने कहा, नौजवान रुक जाओ, तो रुक गए। फिर कहा, नौजवान कुत्तों को देखने लगो, तो कुत्तों को देखने, जैसे वो कुत्तों को देखने लगे कुत्ते भी रुक गए। देखते गए देखते गए तो कुत्ते पूछ हिल हिलाते वापस चले गए। तो विवेकानंद लिखते हैं कि ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा सबक था कि समस्या से दूर नहीं भागना है, उसका सामना करना है। और जब चैलेंज के रूप में आप परिस्थिति को लेते हैं तो आपकी कैपेसिटी भी बहुत बढ़ जाती है।
बिल्कुल, क्योंकि अगर हम किसी भी चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो मैं सोचता हूं हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो ऑटोमेटिकली सॉल्यूशंस की तरफ आने लग जाता है
और एनर्जी भी बढ़ती है,
एनर्जी लेवल।
जैसे हम दूर भागते हैं तो समस्या के कई पहलू है, जैसे एक एक समस्या के पांच पहलू है। अगर मैं इससे डरता हूं तो दो तीन का सामना कर सकूंगा, दूसरों का नहीं कर पाऊंगा,
नहीं कर पाएंगे।
लेकिन जब मैं चैलेंज के रूप में लेता हूं तो पांचों को अच्छे से मैनेज कर पाता हूं, तो इसके कारण बहुत बड़ा फायदा होता है। और चैलेंज के रूप में लेना हो तो मैं हमेशा कहता हूं कि इन तीन शब्दों को याद रखो तो ऑटोमेटिक वह बात आ जाएगी। वह तीन शब्द है फेस इट, फाइट इट एंड फिनिश इट।
फेस, फाइट एंड फिनिश,
हाँ, कि सामना करो, उसके साथ लड़ो और उसे हरा दो।
और वैसे भी मैंने देखा है कि भगवान कहता है कि अगर आप हिम्मत करते हो तो भगवान स्वयं ही आपको उस कार्य के लिए, खत्म करने के लिए, उसको फेस करने के लिए ताकत देता है। और यदि हम कह दें कि मैं ये नहीं कर सकता तो ऑटोमेटिकली शरीर निढाल, मन बिल्कुल खत्म हो जाता है और हम लोग भागने की कोशिश करते हैं।
बस तो वही है कि एक कदम ही उठाने की जरूरत है,
एक कदम उठाने
चैलेंज के रूप में।
कोई भी सिचुएशन हो, कैसी भी सिचुएशन हो, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, अपना चैलेंज को एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है। तो ये तो चैलेंज की बात है।
दूसरा है कंट्रोल।
कंट्रोल,
कंट्रोल का यह मतलब नहीं कि किसको कंट्रोल करो, कंट्रोल का यह अर्थ है कि यह सोचो कि मेरे कंट्रोल में क्या है। जब भी कोई समस्या आती है, कई चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती है और कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में है।
स्पष्ट करना चाहिए।
हाँ जी हाँ, एक उदाहरण से स्पष्ट करना चाहूंगा कि कैसे बहुत अच्छी तरह से अगर जो कंट्रोल में है वो आप करेंगे तो एक तो आपको समस्या के बारे में सोचने का समय नहीं होता है, जिसके कारण तनाव की नेगेटिव इफेक्ट नहीं होती है, और दूसरा कि उल्टा हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिलता है। बहुत अच्छा उदाहरण है प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंस का
जी, बिल्कुल,
जिन्हें कहीं समय पहले ऐसी डिस्ट्रॉफिक बीमारी हुई कि जिसमें सारे शरीर के अंगों को लकवा हो गया
जी।
कई बार न्यूज़पेपर में भी आया है, हमारे दर्शकों ने उनका फोटो भी देखा
होगा,
एकदम बच्चे जैसे है ऐसा फोटो है कि जो बोलने के लिए उनको स्पेशल इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करना पड़ता है। फिर भी यह सोचना चाहिए कि ऐसी बीमारी मुझे आ जाए तो क्या होगा। एक आम व्यक्ति तो एकदम निराश हो जाएगा कि भी जीना ही नहीं, अभी क्या करूं, ऐसा सारे शरीर को लकवा हो गया। तो स्टीफन हॉकिंस हारे नहीं, जो एक अच्छी बात थी इतनी बड़ी बीमारी के अंदर,
दुनिया में सबके समक्ष एक उदाहरण
है कि उनकी उंगलियां काम कर रही है और दिमाग बिल्कुल स्वस्थ है, दिमाग को कोई चोट नहीं लगी है
जी।
तो कंप्यूटर पर वो अपनी ही थियरीज को रिवाइज करते हैं, ब्लैक होल्स के बारे में उन्होंने अच्छा सा काम किया है
जी।
तो आज हम उन्हें ज्यादा सम्मान देते हैं। भारत में भी कई बार आए, एक बार जब भारत में आए तो एशियन एज में फ्रंट पेज हेडलाइन थी, हीरो नंबर वन प्रोफेसर हॉकिंस। तो मैंने सोचा देखो अगर यही व्यक्ति, उसको ये बीमारी नहीं होती। ऐसे कई साइंटिस्ट हमारे देश में आए लेकिन इतना सम्मान उनको नहीं मिलता,
नहीं
है क्योंकि ये बीमारी। जैसे हमने देखा भी है कि भाई बंबई में भी कई बार हुआ है कि भाई एक बार लड़का फर्स्ट आ गया कि जो जोगेश्वरी में झुग्गी झोपड़ी में रहता था, तो लोगों ने उसे बहुत सम्मान दिया कि देखो इस समस्या के बीच में इतना अच्छा काम कर। तो टू थिंग्स अंडर कंट्रोल,
वही है कि मतलब चूजिंग और मेकिंग द बेस्ट आउट ऑफ द वर्स्ट,
व्हाट इज अवेलेबल
आपकी अपनी कैपेबिलिटी, और ये आपके दृष्टिकोण पर भी डिपेंड करता है।
हाँ,
क्योंकि मैं समझता हूँ कोई भी नेगेटिव सिचुएशन आती है तो उसमें कोई ना कोई पॉजिटिव रास्ता जरूर होता है, उसमें एक पॉजिटिव एस्पेक्ट जरूर होता है। आप उसको कैच करके या उसको होल्ड करके उस सिचुएशन में जो चीज आप कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे मैं अपना ही एग्जांपल आपको बताऊं कि हम लोग ऑपरेशंस कई बार करते हैं, तो ऑपरेशंस हार्ट के करते करते हम देखते हैं कि कई बार पेशेंट को नुकसान हो रहा होता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन अपने मन को शांत रखते हुए उसमें हमें अपने जो उसमें लूप होल है उसको एकदम पकड़ते हुए बड़ी तेजी से एक्ट करना पड़ता है, और हम पेशेंट को बड़ी इजीली बाहर भी निकाल लाते हैं। क्योंकि किस तरह बिहेव करता है हर व्यक्ति या हर परिस्थिति, ये वेरी करता है। आप भी जानते हैं, आप एक साइकोथेरेपिस्ट रहे हैं, कई बार ऐसे होपलेस केसेस आपके पास आते होंगे, उसमें भी आप होप जगा देते हैं, उनको बाहर निकाल लेते हैं। ये तो एक अपने आप में एक एग्जांपल होता है।
बहुत अच्छा, वो बताना ही चाहिए कि भी आशा को कभी भी गवाओ ना।
जब होप है लाइफ में तभी लाइफ चलती है।
होप के लिए बहुत अच्छा कहा गया है कि भी होप जो है वह गांव के रास्ते जैसा है। गांव में जब एक व्यक्ति चलता है एक रास्ते पे तो उसके ऊपर लोग चलते जाते एक आध साल में रास्ता बन जाता है। तो होप भी ऐसी ही वस्तु है।
तो डॉक्टर साहब, चैलेंज हुआ, कंट्रोल हुआ,
तीसरा है कम्युनिकेशन कि जीवन आज हमारा है वो प्रेशर कुकर जैसा है।
बिल्कुल,
जैसे नहीं प्रेशर कुकर में प्रेशर बढ़ता है तो सेफ्टी वाल्व ऑन हो जाता है, लेकिन हमारे जीवन में कोई सेफ्टी वाल्व नहीं है, हमें बीमारियां हो जाती है। जरूर परमात्मा ने सेफ्टी वाल्व दिया है, उसका उपयोग करना चाहिए, वह है कम्युनिकेशन कि जब भी समस्या आए कोई एक व्यक्ति भी जो आपके साथ सिंपैथेटिक है उसको दिल की बात सुना दो
जी।
कभी बहुत ज्यादा दुख आए, बहुत समस्या आए तो रो लेना भी अच्छा है, कल बार बार नहीं रोना चाहिए, परंतु एक आध बार 6 मास में कभी आपको सचमुच लगे कि प्रॉब्लम हो रहा है
और
तो आंसू
मैं
में
तो कहता हूँ रोने की जरूरत है, क्या अगर व्यक्ति ना मिले तो भगवान के आगे जाके अपने सब
वो भी ठीक है। अगर कोई सुनने वाला नहीं है, कई बार लोग आके मुझे ये भी कहते हैं कि भी आप कहते हैं कम्युनिकेट करो लेकिन किससे करे। हाँ, घर वाले तो समझते हैं कि भी ये तो टेंशन है, हमेशा बस अपना दुखड़ा ही रो रहा है, ऑफिस में भी कोई तैयार नहीं है।
वैसे डॉक्टर साहब, एक बात तो मैं जरूर कहूंगा कि जो दुनिया में सबसे बड़ा साइकोथेरेपिस्ट है वो भगवान है।
बिल्कुल,
और अगर सब लोग भगवान से साइकोथेरेपी लेने लग जाएं या उसके आगे रखने चले जाएं तो साइकोथेरेपी तो बिल्कुल काम हो जाएगा।
क्योंकि परमात्मा के ड्यूअल बेनिफिट्स
है जी,
कि जो आम व्यक्ति हो तो बात को सुन लेगा
जी,
और आपको डिस्करेज भी करेगा शायद, करेज नहीं करेगा, परंतु परमात्मा आपको इनकरेज करेगा।
तो डॉक्टर साहब, कम्युनिकेट हुआ और फिर कोऑपरेट।
हाँ जी हाँ, कि जब हम दूसरों को सहयोग देते हैं तो बहुत बड़ा फायदा होता है, कि जब आप सहयोग देते हो तो आपको अपनी चिंता के बारे में सोचने का समय नहीं होता है। और दूसरा फायदा यह होता है जब हम सहयोग देते हैं तब, कि हमें यह पता चल रहा है कि मेरी समस्या बहुत ही छोटी है। किसी को जब हम सहयोग देते हैं उसके जीवन में परिवर्तन आ जाता है, तो न केवल हमें, हाँ सभी लोग ये सोचते हैं कि देखो कितना अच्छा हुआ।
और वैसे भी कहा गया है कि गुडनेस हैज अ नेचुरल वे ऑफ कमिंग, बट आप किसी के लिए सहयोग करते हैं, अच्छाई करते हैं, तो वो आपके पास एक
आती
खेल का जो यंत्र होता है वो बूमरैंग की तरह वापस
आता है। वह है कॉन्सेंट्रेशन लोग मुश्किल भी समझते हैं, परंतु उसका एक सहज रास्ता है जिसको मैं कहता हूं एब्सॉर्प्शन, कि उसमें खो जाओ। जो भी कुछ आप कर रहे हैं, जैसे भी स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ रहे हैं, जब टेंशन लेके मेरे पास आते हैं स्टूडेंट, मैं उनको कहता हूं कि पढ़ाई में खो जाओ, देखो तुरंत आपका तनाव खत्म हो जाएगा।
और मैं डॉक्टर साहब ये जरूर कहना चाहूंगा कि कॉन्सेंट्रेशन किसी भी चीज में इंजॉयमेंट के साथ ही आती है।
हाँ जी।
क्योंकि अगर कॉन्सेंट्रेशन आप टेंशन के साथ करेंगे तो वो कॉन्सेंट्रेशन नहीं आती है। तो मैं ये कहूंगा कि अगर कॉन्सेंट्रेशन कोई करना चाहे तो उसको इंजॉय करे पहले।
हाँ जी,
इसी प्रकार मैं समझता हूँ मेडिटेशन भी होती होगी। हाँ, कि आप इंजॉय करें उस चीज को।
या तो आप जो इंजॉय करने की बात कहते हैं ना, इट इज अ सर्कल।
सर,
इफ यू डोंट एंजॉय यू कांट कॉन्सेंट्रेट, एंड इफ यू एंजॉय योर कॉन्सेंट्रेशन विल दे आर लिंक्ड विद, या एंड स्टिल फर्दर यू विल एंजॉय दैट सिचुएशन.
मेडिटेशन,
हाँ, अल्टीमेटली जब भी हम मेडिटेशन की बात करते हैं तो यही भाव आता है कि भैया कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन मेडिटेशन में जो कॉन्सेंट्रेशन है वह परमात्मा में एकाग्रता है कि भी परमात्मा में आप खो जाते हैं. और जब परमात्मा की याद में व्यक्ति खो जाता है तो ऑटोमेटिक वो ब्रेक भी लग जाती है जो हमने डिस्कस किया, साथ साथ में सारी बॉडी भी रिलैक्स,
बॉडी रिलैक्स हो जाती है, नेगेटिविटीज का अंत होता चला जाता है. और मैं समझता हूँ कि जो हमने इतना अच्छा डिस्कशन किया, हम सुन रहे थे, हमारे दर्शक सुन रहे हैं, उनकी भी कितनी स्ट्रेस जो है एकदम मेरे ख्याल से खत्म ही हो गया होगा. और समझते हैं क्योंकि चांस ही नहीं मिलता जब हम ऐसी चीजों के बारे में, ऐसे मेथड्स के बारे में बात
सोचना है. वही पैसा देखा भी कहीं मेरे लेक्चर में भी लोग दूसरे दिन आके कहते हो 5C का मैं सारा दिन सोच रहा हूँ, टेंशन नहीं,
टेंशन नहीं. डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. तो आपने देखा कि तनाव हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग तो बन चुका है, लेकिन हम चाहें तो उसे अपने से भिन्न भी कर सकते हैं. और क्यों ना करें भिन्न, जब हमारे पास एक बड़ी इंटरेस्टिंग, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, एक 5C अप्रोच भी है. अपने जीवन में जो भी परिस्थिति आए उसमें उसे चैलेंज की तरह एक्सेप्ट करिए, और उस चैलेंज में जो कुछ हमारे कंट्रोल में है उस सिचुएशन में हमें कंट्रोल करना है. अपने मन का बैलेंस रखते हुए कंट्रोल करके अपनी जो परेशानी है अपने मित्रों से, या सबसे बढ़िया परम मित्र आपका भगवान, उससे आप शेयर करिए. और जब हम यह करते हैं तो भगवान हमें स्वतः ही कोऑपरेशन देता है. हमें ना केवल भगवान से कोऑपरेशन लेनी है, लेकिन हर व्यक्ति को, समस्त संसार में हरेक को कोऑपरेशन देनी है. और जब हम यह कर लेते हैं तो हमारी उस परिस्थिति में कॉन्सेंट्रेशन प्रॉपर बन जाती है, और इंजॉय करते हुए सहज तरीके से हमारी नैया, हमारी नाव जो है, उस तनावपूर्ण परिस्थिति से पार हो जाती है. यदि आपको कोई प्रश्न हो, कुछ और आप पूछना चाहते हो, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. हमारा ईमेल है omshantistudio@gmail.com. आप हमें फोन भी कर सकते हैं. हमारा फोन नंबर है 9873666555. आशा है आपको यह हमारा एपिसोड पसंद आया होगा. हमारे अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए. नमस्कार. नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे प्रोग्राम माइंड मैटर्स में. जैसा कि आपको ज्ञात है कि अपने पिछले दो एपिसोड्स में हमने तनाव और उसके कुछ रिलेटेड एस्पेक्ट्स के बारे में डॉक्टर गिरीश पटेल के साथ चर्चा की. तनाव हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है, और उसको अपने से भिन्न कैसे किया जाए इसके बारे में कुछ प्रैक्टिकल क्लूज, कुछ प्रैक्टिकल तथ्य डॉक्टर गिरीश पटेल ने हमें बताए. डॉक्टर साहब का स्टूडियो में एक बार फिर स्वागत है. डॉक्टर गिरीश पटेल एक फेमस साइकोथेरेपिस्ट हैं और मेडिटेशन एक्सपर्ट हैं, जो कि पिछले 30 से 40 वर्षों के साथ ब्रह्मा कुमारीज के साथ एसोसिएटेड हैं. आज हम डॉक्टर साहब के साथ अपनी स्ट्रेस के बारे में कुछ और नए एस्पेक्ट्स लेकर चर्चा जारी रखेंगे। डॉक्टर साहब, स्ट्रेस ये तो हम जानते हैं कि हमारा एक अभिन्न अंग है, लेकिन उसको हम चाहें तो उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं या उसे अपने जीवन से हटा सकते हैं। लेकिन अक्सर देखा गया है कि कुछ लोग समझते हैं कि स्ट्रेस जो है हमारे जीवन के लिए जरूरी है, हमारे जीवन को आगे चलाने के लिए, जिसे हम कहते हैं कि कुछ मिथ्स एसोसिएटेड हैं, कुछ ऐसी भावनाएं हैं जो लोग समझते हैं कि स्ट्रेस के साथ एसोसिएटेड है। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में?
सबसे पहले तो आपने ठीक कहा कि जो लोग ये समझते हैं कि स्ट्रेस हमारे जीवन में जरूरी है, उससे हम आगे बढ़ते हैं, उससे हमें हेल्प मिलती है, वो बिल्कुल गलत है। जो आवश्यकता है वह है मोटिवेशन की, आवश्यकता है कंसर्न की। जब भी मोटिवेशन और कंसर्न स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाता है तो हमारा परफॉर्मेंस भी कम होता है। आमतौर पर जो उदाहरण दिया जाता है कि भी क्यों तनाव जरूरी है, तो कहते हैं कि देखिए, स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स वर्ष की शुरुआत में बिल्कुल पढ़ नहीं पाते हैं, लेकिन एग्जाम के दिनों में 18 घंटा पढ़ते, 20 घंटा पढ़ते,
स्ट्रेस
तो
आ जाता।
हाँ देखो, स्ट्रेस आया तो पढ़े, लेकिन ये स्ट्रेस नहीं है। जो इसे मोटिवेशन के रूप में लेते हैं तो वह तो 18 घंटा भी पढ़ पाते हैं।
नहीं, पर क्या आप नहीं समझते कि एंड ऑफ एग्जाम में अगर पूरे साल नहीं पढ़े तो वो स्ट्रेस हो जाएगा, लेकिन मोटिवेशन उनके लिए रहेगा जो पूरे साल पढ़ते रहे हैं?
हाँ, पढ़ते रहेंगे तो मोटिवेशन होगा। या तो ये भी ठीक है कि एग्जाम के एक मास पहले जो मोटिवेटेड हुए हैं तो वह पढ़ेंगे, लेकिन कुछ स्टूडेंट डर जाते हैं
जी,
कुछ स्टूडेंट एंशियस हो जाते हैं तो उल्टा पढ़ नहीं पाते, यहां तक कि भी एग्जाम के दिनों में उन्हें लूज मोशन हो जाता है
जी, हाँ,
जिसका कोई भी एक्चुअली ऑर्गेनिक रीजन नहीं है
जी।
कुछ लोगों को बुखार भी हो जाती है, इसके लिए एक स्पेशल टर्म भी है, एग्जामिनेशन फीवर
जी,
कि एग्जाम के दिनों में ही फीवर हो गया, वो कारण मन में है वास्तव में।
तो डॉक्टर साहब, कई लोग कहते हैं कंपनीज में, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं आजकल, यूथ्स इतने कंपनीज में काम करते हैं, कहते हैं कि हमें ड्राइविंग फोर्स चाहिए, पॉजिटिव स्ट्रेस जिसे लोग कहते हैं, कि हमें एक ड्राइविंग फोर्स की तरह कि हम अपना काम करें। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ पॉजिटिव स्ट्रेस भी होता है ये?
मतलब मैं ये कहूंगा कि आपको मोटिवेशन चाहिए, आपको इंस्पिरेशन भी चाहिए।
यानी स्ट्रेस जो है एक नेगेटिव टर्मिनोलॉजी।
हाँ,
बेसिकली ये कहना चाहिए कि स्ट्रेस को पॉजिटिव वर्ड नहीं देना चाहिए।
हाँ, कई एक्सपर्ट यू स्ट्रेस कहते हैं, परंतु इसमें भी तो स्ट्रेस है ही, इसलिए मैं समझता हूं कि यू स्ट्रेस भी अच्छा शब्द नहीं है, क्योंकि जो हम भाषा का उपयोग करते हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण है। यू स्ट्रेस के बदले मैं समझता हूं उसे मोटिवेशन कहना चाहिए, उसे कंसर्न भी कह सकते हैं, वो दोनों चीजें बहुत अच्छी है।
तो बेसिकली नेगेटिविटी का कोई भी एलिमेंट लाइफ में ना रहा है, यानी स्ट्रेस जो है नेगेटिव वर्ड है,
बिल्कुल
स्ट्रेस को हमारी जिंदगी में, हमारे लाइफ में कोई स्थान
नहीं देना चाहिए।
यानी अटेंशन रखें लेकिन टेंशन ना रखें।
हाँ जी, हाँ ये ठीक है, अटेंशन वो पॉजिटिव शब्द है। और एक बहुत अच्छी अगर गहराई से समझने की बात है कि मोटिवेशन से भी अच्छा है इंस्पिरेशन।
जी,
लोग पूछते भी मोटिवेशन और इंस्पिरेशन में क्या फर्क है, तो मोटिवेशन शायद आपका कम भी हो सकता है कि भी आज आपकी तनख्वाह बढ़ गई, आपको प्रमोशन मिल गया तो थोड़े आप मोटिवेट हुए, लेकिन हो सकता है एक दो साल के बाद वो मोटिवेशन खत्म हो जाए
जी।
परंतु इंस्पिरेशन ऐसी चीज है कि वंस यू आर इंस्पायर्ड तो वह कम नहीं होगा। इंस्पिरेशन बच्चे को जन्म देने जैसा है कि एक बार बच्चे का जन्म हो गया फिर उसे बड़ा होना ही, आगे बढ़ना है। तो ऐसे ही मेरे विचारों में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमें इंस्पायर होना है
जी।
तो आप प्रगति करते ही रहेंगे,
करते ही रहेंगे। डॉक्टर साहब, कई लोग सोचते हैं कि अगर मुझे स्ट्रेस से हटना है या उसको अपनी लाइफ से हटाना है तो मैं एक ब्रेक ले लूं, मैं कहीं चला जाऊं, ऐसे करके, तो आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे तनाव दूर होता है?
अच्छा है, कई बार तो हमें पेशेंट भी कहते हैं
जी,
क्योंकि पेशेंट भी आते, एक बार आएंगे साइकोथेरेपी के
लिए, लोग कहते हैं लेट्स टेक अ ब्रेक,
फिर कहेंगे कि डॉक्टर अभी हमने ऐसा सोचा है कि भाई हम 10 दिन माथेरान जाके आते हैं, वहां रिलैक्स होके आएंगे तो अच्छा हो जाएगा। परंतु वास्तव में यह सही बात नहीं है, क्योंकि समझो आपने ब्रेक ली तभी आपको आराम मिल जाएगा, थोड़ा रिलैक्सेशन मिलेगा, आप हो सकता है उस परिस्थिति से दूर भी चले गए, परंतु सप्ताह 10 दिन 15 दिन के बाद तो आपको वापस आना है और तब फिर से उस परिस्थिति का सामना करना ही है, तो टेंशन होगा ही होगा। इसलिए सबसे अच्छा तो है कि उस परिस्थिति के बीच में मन को शांत रखना सीखे,
ये एक आर्ट है।
हाँ, वो उस व्यक्ति जैसा है कि जिसको ना बहुत गुस्सा आता था तो उसने सोचा कि मैं हिमालय पे चला जाऊं और मौन ले लूं। तो बस मौन ले लिया तो लोग तो उससे बड़े खुश हो गए, कहीं उसके शिष्य भी बनने लगे, मौनी बाबा ये तो बिल्कुल बोलता नहीं है, बड़े खुश हुए। लेकिन कुछ सालों के बाद फिर कुंभ का मेला था, वहां जाना पड़ा। तो वहां गए तो बड़ी भीड़ थी, किसी ने पैर पे पैर रख दिया, तो जोर से गुस्से में आ गया, गालियां बकने लगा। तब पता चला अरे बाप रे, मैं तो वहीं के वहीं हूं, इतने सालों में मेरे में कोई परिवर्तन
मतलब परिस्थिति से पलायन नहीं करना, लेकिन इस संसार में रहते हुए भी किस तरह हम अपने आर्ट से, मेडिटेशन के आर्ट से, किसी भी और टेक्निक से हम अपने मन को बिल्कुल शांत कर रहे हैं, तनाव को अपने
और उसको सामना करने की युक्तियां
सीख ले,
उसको कैसे हम पॉजिटिव रूप में ले
ले सकते
ऐसे वो सारी युक्तियों से ठीक से मैनेज करें।
जी हाँ। अच्छा, कई लोग सोचते हैं कि हम लोग अगर एक्सरसाइज कर लेते हैं, हम लोग वर्कआउट कर लेते हैं, तो आई कैन डाइल्यूट माय स्ट्रेस, मैं अपने अंदर से तनाव को खत्म कर सकता हूँ, आप क्या कहेंगे?
वो भी थोड़े समय तक कम होगी, ये इतना बुरा नहीं है। ब्रेक लेना तो सबसे बुरा है, वो कभी नहीं करो।
वैसे तो ब्रेक ले सकते हैं,
फिर ब्रेक ले सकते हैं कि नहीं, नहीं समझो कि उससे आपका स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, रिलैक्सेशन के लिए ठीक
जरूर,
रेस्ट देनी है बॉडी को। वर्कआउट भी एक्चुअली परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, उतना समय हो सकता है कि भी आपको अच्छा लगता है, क्योंकि जब एक्सरसाइज करते हैं तो एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जो बॉडी के नेचुरल पेन किलर्स है, इसके कारण आपको अच्छा लगेगा। परंतु आप मेथड्स को नहीं समझते हैं कि कैसे परिस्थिति का आप सामना करें, उस तनाव से कैसे ऊपर उठे, उसकी टेक्निक आप एक्सरसाइज में नहीं सीखते हैं। तो इसलिए वह भी एक मिथ है कि बस मैं रोज आधा आधा घंटा एक्सरसाइज करूंगा तो मेरा तनाव खत्म हो जाएगा, बस थोड़ी सी आपको राहत
मिल जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, कई लोग कहते हैं कि यू नीड अ डॉक्टर और अ साइकोथेरेपिस्ट टू डायग्नोज योर स्ट्रेस, तो क्या हर चीज के लिए साइकोथेरेपिस्ट के पास जाना जरूरी है?
नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है ना। इसमें दो प्रकार की परिस्थिति आएगी, एक तो तनाव है कि जो आप ठीक से काम कर रहे हैं, आपका जो डेली रूटीन है, ऑफिस जा रहे हैं और जो कार्य आप ठीक से कर रहे हैं, फिर भी तनाव को अनुभव करते हैं, वो एक स्थिति है। और दूसरी ऐसी स्थिति आती है कि जिसमें आपकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। ऑफिस में भी लोग रियलाइज करते हैं कि आप ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, आपके बॉस, आपके कलीग्स भी इसको फील करते हैं। जैसे बच्चे हैं, उनकी एग्जाम में परसेंटेज सडनली कम होने लगे। जब इस प्रकार की कोई स्थिति है कि जहां पर हमारी कार्यक्षमता पर बुरा प्रभाव हो रहा है, तो शायद साइकोथेरेपिस्ट के पास जाने से आपको मदद मिल सकेगी। और जो पहली अवस्था में उसमें अपने आप भी आप अपने ही साइकोथेरेपिस्ट बन जाओ, तो भी काफी हद तक आपको मदद मिल सकेगी।
मूलतः यह है कि यू आर दी बेस्ट डॉक्टर, क्योंकि तनाव आपका है तो आपसे बढ़िया डॉक्टर कोई हो नहीं सकता। अपने आप को खुद डायग्नोज करें और प्रिवेंशन इज बेटर देन
क्योर। हाँ, मैं आपको और एक मीथ बताऊं। और एक मीथ है, कई लोग बड़े बड़े लेक्चर में भी कहते हैं कि भी अच्छा म्यूजिक सुनो, सॉफ्ट म्यूजिक सुनेंगे तो आप रिलैक्स हो जाएंगे। बल रिलैक्स होंगे परंतु वह तनाव को आप ठीक से मैनेज नहीं कर पाएंगे। रिलैक्सेशन के लिए भले म्यूजिक सुनो, परंतु यह सोचिए कि भी और भी कुछ करना पड़ेगा मुझे, और ऐसी सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप मेथड समझनी होगी, तब आप ठीक से तनाव को मैनेज कर पाएंगे, उसके ऊपर उठ सकेंगे।
तो ये तो डॉक्टर साहब क्लियर, आपने बहुत स्पष्ट रूप से हमें बता दिया कि मिथ्स हैं स्ट्रेस के बारे में, कि किसी डॉक्टर के पास जाने की अक्सर जरूरत नहीं है, और तनाव का जो बेस्ट डॉक्टर है हम खुद ही हैं, और उसको हम बड़ी इजीली मैनेज कर सकते हैं अगर हम उसको क्रिटिकली एनालाइज करें, उसका कारण देखें, निवारण स्वयं हमारे अंदर ही है। तो आपने जैसे हमारे पिछले एपिसोड में बताई थी 5C अप्रोच, तो हमें कई लोगों ने लिखा भी और बताया भी, उन्हें बहुत पसंद आई। तो और भी कोई प्रैक्टिकल टेक्निक्स और इजी टेक्निक्स आप प्रैक्टिस करते आए हैं ओवर 30 इयर्स, जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे, कुछ और अच्छे तरीके तनाव को अपनी जिंदगी से हटाने के लिए?
अच्छा, जब मैं इस पर सोचने लगा, ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में मेडिटेशन सीखा
जी,
और फिर जब ये सोचने भी लगा कि भाई कोई सरल बातें लोगों को बतानी चाहिए कि जो इंटरेस्टिंग भी हो, तो मैं शुरू से बता,
आजकल प्रैक्टिकल टिप्स,
हाँ जी,
हर कोई बिजी है, आप भी और हम भी और लोग भी अपना काम करते हैं, तो उनको ऐसा चाहिए कि वो काम भी करते रहे और लाइफ भी बड़ी सिंप्लीफाई और इजी हो जाए।
ये भले बड़ा बेसिक है
जी,
परंतु फिर भी बहुत जरूरी है जो मैं बताता हूँ, कि सबसे पहली आवश्यकता है, अगर प्रॉब्लम है तो डॉक्टर अली को कंसल्ट करो। आप कहेंगे अभी बोला डॉक्टर के पास नहीं जाओ, और अभी बोल रहे हो कि भी डॉक्टर अली को कंसल्ट करो।
कौन है डॉक्टर अली?
हाँ जी, तो डॉक्टर अली का स्पेलिंग क्या है, ए एल आई, तो ए स्टैंड्स फॉर एक्सेप्ट, एल का मतलब है लिसन,
लिसन,
और आई का अर्थ है इंट्रोस्पेक्ट,
इंट्रोस्पेक्ट।
बस ये तीन चीजें भी अगर अच्छे से कोई समझदारी से करे तो काफी तनाव कम हो जाएगा
जी। एक्सेप्टेंस से आप क्या समझते हैं, एक्सेप्टेंस मतलब, किस चीज को?
हाँ, हाँ, पहली बात तो ये जरूरी है कि ये एक्सेप्ट करें कि मुझे तनाव है। हाँ, ये भी एक मिथ है जो हम डिस्कस कर रहे थे, कईयों को बहुत प्रॉब्लम होता है कहीं, लेकिन समझते मुझे कुछ नहीं है,
कुछ नहीं है,
नहीं मैं तो ठीक हूं, तो वह बहुत बड़ी गलती है। और थोड़ा भी तनाव हो तो आप इस बात को स्वीकार करो कि मुझे तनाव है और उससे मुक्ति प्राप्त करने की आवश्यकता,
क्योंकि अगर व्यक्ति नहीं समझेगा तो वो उसके लिए एफर्ट ही नहीं लगाए।
हाँ, और कहते कि जब आप स्वीकार करते हैं कि मैं तनाव में हूं तो आपकी आधी जीत हो गई, अभी बस आधा ही आपको मेहनत करनी।
जी हाँ।
और लोग एक्सेप्ट नहीं करते, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक अलग से उदाहरण है
जी,
परंतु उससे बड़ा स्पष्ट होगा कि देखो लोग है ना मोटी बात को भी एक्सेप्ट नहीं करते। स्ट्रेस तो सूक्ष्म है। पिछले वर्ष भुवनेश्वर में मेरी एक स्वास्थ्य की शिविर थी, तो बस वहां से मैं जा ही रहा था, शिविर पूरी हो गई थी
जी।
तो एक व्यक्ति वहां आया मुझे बताने के लिए कि उसका हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, वो ऑपरेशन का स्कार है, वो अपने शर्ट को उसने ऐसे उठाया तो भले वो नॉर्मल दुबला पतला था लेकिन उसका पेट एकदम आगे आया था। मैंने उसको कहा कि भाई आपका पेट, तो कहते हैं नहीं नहीं डॉक्टर मेरा वेट तो एकदम ठीक है। फिर से मैंने कहा लेकिन आपका पेट, तो कहते हैं डॉक्टर हर सप्ताह में चेक कराता हूं, मेरी हाइट के अनुसार जितना मेरा वेट होना चाहिए उतना ही है। अलग अलग रीति से मैंने 5 बार कोशिश की लेकिन स्वीकार करने कोई तैयार नहीं है कि उसको ये पेट को कम करने की जरूरत है। हाँ, जबकि ये गुब्बारे की तरह बहुत बड़ा पेट था उसका
जी।
तो वही उदाहरण मैंने इसलिए मेरी बुद्धि में फिट हो गया कि जब शारीरिक बातों को भी लोग स्वीकार नहीं करते हैं कि मुझे वेट कम करने की आवश्यकता है, तो स्ट्रेस तो मन की बात है, थोड़ी सूक्ष्म बात है, तो उसको तो और भी लोग एक्सेप्ट नहीं करते।
जी हाँ, तो एक्सेप्टेंस जो होती है मैं समझता हूँ उसके लिए एक लेवल ऑफ टॉलरेंस और अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए होती है।
सबसे बड़ी बात अंडरस्टैंडिंग,
क्योंकि जो कुशाग्र बुद्धि है, यथार्थ बुद्धि है, वो उस सिचुएशन को एनालाइज करेगा। मैं समझता हूँ आप तो मेडिटेशन करते आए हैं ब्रह्मा कुमारी के साथ, और आपने अपनी लाइफ में इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी किया होगा कि हर सिचुएशन को जैसी सिचुएशन है उस तरह देखना। क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम किसी व्यक्ति को या किसी परिस्थिति को उस तरह देखते हैं जैसे हम उसे देखना चाहते हैं, हम उसको उस तरह नहीं देखते जैसे वो है, और अगर जैसे सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई देता है, तो अगर हम अपने आंखों के आगे से ये पर्दा उठा दें और हर सिचुएशन को उसके अकॉर्डिंग एनालाइज करें, तो मेरे ख्याल से फिर एक्सेप्टेंस इजीली आ जाती है।
फिर दूसरा है, एक बार एक्सेप्ट कर लिया,
एक्सेप्ट,
फिर एल का अर्थ है लिसन,
लिसन
कि तनाव को भी सुनो। शायद आप कहेंगे भी तनाव में क्या सुनने जैसा है, परंतु तनाव की एक बहुत अच्छी परिभाषा भी है। उस परिभाषा में, उस डेफिनेशन में कहा गया है कि तनाव एक मैसेंजर है जो आपको यह कहने के लिए आया है कि परिवर्तन की आवश्यकता है। तो अगर आप उसे सुनेंगे तब पता चलेगा कि परिवर्तन की जरूरत है।
जी हाँ।
और जब नहीं सुनते तो कैसे समस्या होती है। इसमें भी आपको एक अलग प्रकार का उदाहरण देता हूं मैं, कि जब ठंडी की मौसम आती है तब वह भी एक संदेश वाहक है, एक मैसेंजर है कि आपको ठंडी लगती है,
ठंडी लगती है,
तो वह क्या मैसेज लेके आया है,
गरम
कि गर्म कपड़े पहनो, और जो गर्म कपड़े नहीं पहनता है तो वह बीमार हो जाएगा। तो बस ऐसे ही जो भी तनाव आपके जीवन में आता है कि आपको निराशा लगती है, उत्साह की कमी हो जाती है, वर्क का प्रेशर लग रहा है, जो भी बात है वह एक मैसेंजर है, सचमुच उसको शांति से सुनो।
और कहा भी जाता है कि जो व्यक्ति अच्छा सुनता है, समझदार व्यक्ति, उसे ही कहा जाता है जो उस चीज को सुने और परिवर्तन समय से पहले ले आए।
बिल्कुल।
इससे पहले कि तनाव उसको टेक ओवर करके उसके शरीर को, उसके मन को क्षति पहुंचाए, उससे पहले वह समझे उसको और अपने अंदर जो इम्पोर्टेंट चेंज है, नेसेसरी चेंज है, उसको ले आए ताकि तनाव से वो बच सके।
आपने बहुत अच्छा कहा, ये सूक्ष्म पॉइंट है कि तनाव बीमार आपको कर दे
जी,
उससे पहले उसको सुनो, उससे पहले परिवर्तन करो। अगर बीमारी आ गई तो बहुत देरी हो गई,
फिर तो देरी हो गई।
उसके बाद आप बहुत कुछ पल कर सकते हैं बीमारी,
उसके बाद तो बदलना पड़ेगा, समय आपको मजबूर करेगा कि आप बदलो, लेकिन उससे पहले। तो एक्सेप्ट हमने किया उस सिचुएशन को, डॉक्टर अली जैसे आपने बताया, हमने सुना उसको, और उसके बाद
फिर आई है इंट्रोस्पेक्ट। कि अभी इंट्रोस्पेक्ट क्यों करना है, क्योंकि मूल कारण को ढूंढना होगा
जी,
कि ये तनाव मुझे क्यों हो रहा है। अगर वो कारण मिल गया तो परमानेंट निवारण भी है।
तो मूल कारण आखिर क्या है?
पहले तो मतलब ये जो मैं कह रहा हूं कि सुनो, फिर इंट्रोस्पेक्ट करो, ये थोड़ा शांति से बैठ करके रिलैक्स होकर के सचमुच सोचो कि भल मेरे ऊपर वर्क का प्रेशर आ रहा है, परंतु उसका कारण क्या है। कई बात बात बड़ी सिंपल सी भी होती है, छोटी सी बात है, वो आपने सुना नहीं इसलिए ऐसा नहीं हुआ। एक हॉस्पिटल में एक रजिस्ट्रार थे, उसी डिपार्टमेंट में दूसरे भी रजिस्ट्रार होते थे। ये जो रजिस्ट्रार था वो रोज पेशेंट को कई बार तो दो दो बार भी देखेगा, अच्छे से सारी उसकी नोट्स लिखेगा, सब कुछ करेगा। उसके कारण उस पर वर्क का प्रेशर बढ़ जाता था। जो दूसरे रजिस्ट्रार थे वो समझो दो तीन दिन में भी एक बार पेशेंट को देख लिया, पूरा उस पर ध्यान नहीं देते थे, और ये वर्क प्रेशर के कारण उसे टेंशन होता था। तो एक बार जाकर के उसने अपने बॉस को कंप्लेन की कि सर मुझे बहुत वर्क का प्रेशर हो रहा है, मैं तो पेशेंट को दो दो बार देखता हूं, जो दूसरे रजिस्ट्रार है वो तो तीन दिन में ही एक बार देखते हैं, उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है, मुझे टेंशन हो रहा है। तो बॉस ने ध्यान से सुना और फिर कहा कि ये आपको डिसाइड करना है। तो भी वो समझा नहीं, फिर से बोलने लगा, दोबारा कहा कि भाई आपको निर्णय करना है। तीन चार बार कहा तब उसे क्लिक हुआ कि मुझे ये कह रहे हैं कि ये मेरा निर्णय है कि भाई मैं रोज दो बार देखूं। भले अच्छी भी बात है,
अच्छी बात भी है, लेकिन इसमें डिस्क्रिशन भी चाहिए कि किस मरीज को जरूरत है, उसको कितनी बार देखना है,
या तो उसे खुद निर्णय करना है कि प्रेशर बढ़ रहा है, तो अगर ये नॉर्म्स है कि भाई इतना ही आवश्यक है तो भले वैसे करो। ये तो सिर्फ एक उदाहरण है, जीवन में भी इंट्रोस्पेक्शन करने से आप उस कॉज को फाइंड आउट कर पाते
हैं। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अपना एक्सपीरियंस ये कहता है, इंट्रोस्पेक्शन अपने अंदर जब हम करते हैं, हम देखते हैं झांक कर, तो हमें लगता है हमारे अंदर जो ईगो है, एक जो बॉडी कॉन्शियसनेस की जो भावना हम सबके अंदर भर गई है, क्योंकि हम सब अपने आप को किसी न किसी फिजिकल चीज से लिंक करते हैं और अपने आप को एक फिजिकल बीइंग ही समझते हैं। तो ये समझना एक मूल कारण हो गया हमारे अंदर तनाव का, क्योंकि सब कुछ हम समझते हैं ये शरीर है, शरीर को ही सजाते हैं, शरीर को ही ट्रीट करते हैं, और अंत में शरीर को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और यह देखते देखते जिंदगी जो है एकदम एक पत्थर नुमा बन गई है, और जरा सा भी कुछ बात हो जाए ईगो और इंपल्सिवनेस हमारी लाइफ के अंदर आ गई। तो इसको अगर तोड़ दिया जाए तो काफी हद तक हम तनाव का निवारण कर सकते हैं, और मैं समझता हूँ आप इसके बारे में और बेहतर जानते होंगे, क्योंकि आप तो ब्रह्मा कुमारी के साथ मेडिटेशन करते रहे हैं, और जहां ये शायद बताया भी जाता है कि जो फिजिकल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मेटाफिजिकल एंटिटी है।
और आपने बहुत ऊंची बात की, शॉर्ट में बताया लेकिन ये ऊंची बात है कि सबसे बड़ी बात है कि ईगो को खत्म करो। कहते भी है कि भी ईगो का अर्थ जो है कि एवरीथिंग गुड आउट, कि ईगो है तो सब कुछ अच्छा जाएगा। दूसरा भी एक कहा है, ईगो का अर्थ है एजिंग गॉड आउट, ईगो होगा तो गॉड को आप बाहर ले जा रहे हो,
क्योंकि अपने अंदर की जो सिंप्लिसिटी है, अच्छाई है, जो अंडरस्टैंडिंग है, जहां अहम भाव आ जाता है वहां मनुष्य के अंदर टॉलरेंस खत्म हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाती है, और जहां ये टॉलरेंस अंडरस्टैंडिंग चली जाती है तो हर छोटी चीज हर बड़ी चीज तनाव लाती है।
ऐसे इंट्रोस्पेक्ट करें, जैसे ईगो की आपने बात कही, और भी कई चीजें कि भी जेलसी से मुझे तनाव हो रहा है, आप इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तब पता चलेगा कि भी जो मेरा तनाव उसका कारण जेलसी है
जी,
या तो भी इसका कारण कंपैरिजन है, मैं अपनी कंपैरिजन दूसरों के साथ कर रहा हूं इसलिए मुझे तनाव हो रहा है, या तो भी मेरे में ओवर एक्सपेक्टेशन है
जी,
इसके कारण मुझे तनाव हो रहा है। इन सभी बातों को जब हम इंट्रोस्पेक्ट करते हैं तो एक तो रियलाइजेशन होता है
जी,
फिर उसको दूर करने के लिए आध्यात्मिकता एक बहुत बड़ा फोर्स है, कि जब व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से प्रगति करता है तो ऑटोमेटिक वह जो ईगो, जिसको कहा है कि भी अहंकार से सर मोटा होता है
जी,
और सर मोटा होता है तो सर दर्द होता है, और कहते स्वमान से नम्रता आती है, और नम्रता से हृदय विशाल होता है
जी।
तो ऐसे ऑटोमेटिक आध्यात्मिक पुरुषार्थ करने से हमारे में नम्रता आती जाती है। स्वमान जरूर रहेगा परंतु अहंकार थोड़ा सा भी नहीं होगा। ऐसे ही जब जलसी भी आए तो हम उल्टा यह सोचेंगे कि मुझे ईर्ष्या नहीं करनी, अपने आप को में परिवर्तन लाना है। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की प्रेरणा आध्यात्मिकता से आती है। और ध्यान के अभ्यास से मैंने देखा है कि हम परिस्थिति को सही रूप में देख पाते हैं। आज लोग सही रूप में परिस्थिति को देख नहीं पा रहे हैं, इसके कारण उसे जो टर्न करने की जरूरत है। अब ऐसे भी कई बार हम समझते हैं कि भी विचारों को मुझे टर्न करना है, परंतु वो व्यक्ति कर नहीं पाता है। और एक जो बहुत बड़ा फायदा होता है आध्यात्मिकता से, वह है कि हमारी कॉन्शियसनेस राइट बनती है। फॉर एग्जाम्पल कि भी हाथ में मुझे कुछ पकड़ना है, तो अगर मैंने हाथ में पकड़ा है, सीधा पकड़ा है, फिर मैं उसको छोड़ भी दूं, प्रेशर नहीं दूं, तो भी वो गिर नहीं जाएगा। तो अगर मैंने उल्टा पकड़ा है उसको,
गिर जाएगा,
तो प्रेशर देना पड़ेगा। नहीं, अगर पकड़ना है तो प्रेशर देना पड़ेगा, अगर छोड़ दिया तो गिर जाएगा। तो आज यही कारण है
कि हर चीज
लोगों की कॉन्शियसनेस उल्टी
हो गई है।
क्योंकि कॉन्शियसनेस उल्टी हो गई इसलिए प्रेशर देना पड़ता है। परिवार में भी देखो, बच्चों पर प्रेशर देना पड़ता है।
और ये जो आपने बताया डॉक्टर अली वाली बात आपने बताई, उसमें मैं समझता हूँ कि एक्सेप्टेंस, इंट्रोस्पेक्शन और लिसनिंग ये सेल्फ से चालू होती है।
हाँ,
क्योंकि अक्सर लोग अपने से ही प्यार करना भूल गए हैं। और जो व्यक्ति अपने आप से प्यार नहीं कर सकता, अपने आप को एक भगवान का बच्चा समझ कर अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मैं समझता हूँ दुनिया के बाकी लोगों के लिए, अपने कोलीग्स के लिए कैसे प्यार बुलाएगा, कैसे उनको एक्सेप्ट कर पाएगा।
बिल्कुल सही कहा। और स्व को पहचानना भी जरूरी है,
बहुत जरूरी,
गहरा विषय है
जी।
तो जब आप स्व को पहचानेंगे तो फिर वह पूरा
परिवर्तन आएगा। डॉक्टर साहब, समय बहुत हुआ है आपका स्टूडियो में आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके साथ अपनी चर्चा अपने अगले एपिसोड में फिर जारी रखेंगे। तो आपने देखा कि तनाव हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग तो बन चुका है, लेकिन हम चाहें तो उसे अपने से भिन्न कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है जो आज हमने डिस्कस किए कुछ ऐसे मिथ्स कि तनाव हमारी जिंदगी में जरूरी है, ऐसा नहीं है। इसको एक नेगेटिव फोर्स समझिए। किसी भी नेगेटिविटी को अपने जीवन में स्थान देना मूर्खता कहलाती है। इस नेगेटिव फोर्स को हमें अपनी जिंदगी से हटा देना है, या यूं कहें कि हैविंग अ लाइफ फ्रॉम डिस्ट्रेस टू डिस्ट्रेसिंग योरसेल्फ, यानी अपनी जिंदगी में दुख से एक खुशी की तरफ जाना है। और उसके लिए एक बहुत ही अच्छी अप्रोच हमें बताई कि डॉक्टर अली को ध्यान रखिए, प्यार करिए, अपने से प्यार करिए, दुनिया में जो भी मिलता है उसे एक्सेप्ट करिए, उसकी बात को ध्यान से सुनिए, अपने मन की बात को ध्यान से सुनिए, उस पर चिल्लाइए नहीं, और अपने अंदर झांकिए कि क्यों हम लोग आज अपने अंदर ये ईगो की भावना, ऐसी भावना लेकर चलते हैं। अगर हम इन बातों का ध्यान रख सकते हैं तो मैं समझता हूं कि हम सभी लोग अपनी जिंदगी में से 90% तनाव हटा सकते हैं। आशा है आपको यह हमारा एपिसोड पसंद आया होगा। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, हम अपनी चर्चा जारी रखेंगे डॉक्टर गिरीश पटेल के साथ। अब हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे प्रोग्राम माइंड मैटर्स में। जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपने पिछले कुछ एपिसोड्स में डॉक्टर गिरीश पटेल के साथ चर्चा की तनाव के बारे में। तो तनाव क्या होता है, उसके कारण क्या हैं, उसका निवारण प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस क्या हैं, इसके बारे में हमने उस पर प्रकाश डाला। तो आज हम कुछ तनाव की प्रैक्टिकल सिचुएशंस, रियल लाइफ सिचुएशंस जो हम और आप डेली फेस करते हैं, उसके बारे में अपनी चर्चा जारी रखेंगे डॉक्टर गिरीश पटेल के साथ। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
नमस्कार।
तो डॉक्टर गिरीश पटेल, जैसे हमने आपको बताया था कि एक फेमस साइकोथेरेपिस्ट हैं और मेडिटेशन एक्सपर्ट हैं, जो कि पिछले 30 वर्षों से ब्रह्मा कुमारीज के साथ एसोसिएटेड हैं। 5000 से भी ज्यादा लेक्चर्स ऑल ओवर दी वर्ल्ड उन्होंने दिए हैं और स्ट्रेस काउंसलिंग के लिए एक फेमस एक्सपर्ट माने जाते हैं। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा। आप अभी तक जो हमने बात की, हम सोच रहे थे कि अगर ऐसा हो तो ये कर सकते हैं, इनके लिए ये स्टेप्स हैं। मैं कुछ सोचता हूँ रियल लाइफ सिचुएशंस हम लोग लें।
हाँ, पूछिए।
फॉर एग्जांपल, आप देखिए कि अगर एक व्यक्ति है, एक फैमिली है, जो अपने घर में कोई व्यक्ति उसे अटैच्ड बहुत ज्यादा है, सडनली किसी रिलेटिव की डेथ हो जाती है। अब ये जो सिचुएशन है काफी स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो जाती है, और ऐसे टाइम में अगर हम किसी को स्ट्रेस मैनेजमेंट पढ़ाने जाएं तो मुझे सोचते हुए भी बहुत खराब लगता है, और उस व्यक्ति को उस टाइम पे डिस्ट्रेस करना भी बहुत मुश्किल होता है। ऐसी सिचुएशन के लिए आप क्या कहेंगे?
तो ऐसी सिचुएशन में दुख तो होगा ही, ऐसे सिचुएशन में तो रोना जरूरी है। अगर वो रो नहीं रहा है तो उसको रुलाओ भले, क्योंकि वो बिल्कुल अगर एक्सप्रेशन लेस हो जाएगा तो भी बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। और एक जो काम शुरू में करना चाहिए कि उसे किसी रीति से एक्सेप्ट करवाएं। यहां भी डेथ को कई बार सोचते कि डेथ हुई नहीं है, क्योंकि उसे साइकोलॉजिकल वो एक ट्रॉमा लगा है, एक शॉक है बहुत बड़ा, वो शॉक से व्यक्ति बाहर नहीं आ पाता है। तो जितना जल्दी उसे वो एक्सेप्ट करेगा वह जल्दी रिकवरी होगी। फिर वह जो दुख का पीरियड तो रहना है, परंतु वो कम हो तो अच्छा है। अगर वो एक सप्ताह में, 10 दिन में उससे सचमुच नॉर्मलनेस में आ जाए तो बेस्ट। अगर वह स्थिति 3 महीना 4 महीना तक कायम रही तो फिर कहेंगे कि भाई इससे बड़ी समस्या है।
जी बिल्कुल, आपने सही बोला, लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये हम चाहते हैं ऐसा हो, लेकिन ये हो कैसे?
हाँ, वो मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ। अभी इसमें तो ये भी बताना चाहूंगा, जो आपने कहा ना कि भी रियल लाइफ सिचुएशंस, तो इसमें दो इश्यूज लेने चाहिए। मेरी जो वर्कशॉप्स होती है उसमें भी मैं छोटे छोटे ग्रुप्स बना करके ऐसे सिचुएशन देता हूँ, और उनको फिर ये कहता हूँ कि आप यह सोचो कि पहले तो क्या नहीं करेंगे, और फिर दूसरा है कि क्या करेंगे। तो भाई ऐसी सिचुएशन के अंदर भी एक तो कि इसको जैसे एक्सेप्ट नहीं करना, वह नेगेटिव हुआ तो कोई रीते से उसको हम एक्सेप्ट करवाएंगे। दूसरा, ऐसी सिचुएशन में भी ये नहीं सोचो कि भी नींद की गोलियां खा के सो जाना है। कुछ लोग ऐसा करते भी, लेकिन वह गलत बात है। उल्टा उसे वह जो दुख है वो थोड़ा शॉर्ट टाइम भले रहे, लेकिन वह होता रहे। फिर अब क्या करना है, पॉजिटिव स्टेप्स जो लेने हैं कि अपनी एटीट्यूड को चेंज करो। अब जैसा व्यक्ति वैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल कि भी आपकी माँ की डेथ हो गई, कि भी उनकी 70 ईयर्स की थी, तो भी दुख तो डेफिनेटली होगा, परंतु अगर हम उस समय अपनी एटीट्यूड को कोई रीते से चेंज करें कि देखो कहीं है कि भी जिनकी माँ तो 4 साल में ही गुजर गई है, तो फिर उनके लिए तो बहुत बड़ी समस्या है। मैं तो 40 साल का हुआ या 50 साल का हुआ तब तक मेरी माँ थी, वो कंप्लीट 70 ईयर्स तक जिंदा थी, तो इसलिए आई एम पॉजिटिव इन दिस। लाइक दैट यू विल बी एबल टू चेंज योर एटीट्यूड। और एक जो इसमें बहुत बड़ी बात है, वो आध्यात्मिकता मदद करेगी कि हमें आत्मा ने इस शरीर का त्याग किया है, आत्मा तो अविनाशी है, उस रूप से अगर देखना प्रारंभ करे कि जो मेरा प्यार था वह शरीर के प्रति नहीं था, वास्तव में मेरा प्यार होना भी चाहिए आत्मा के प्रति। अगर आत्मा के प्रति प्यार है तो आत्मा तो अविनाशी है, तो आज भी मेरा उनके प्रति प्यार है, तो उसे सचमुच दुख है वह नहीं।
और ऐसी सिचुएशन में मैं समझता हूँ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति चला जाता है, जैसे कहते हैं जीव आत्मा, तो आत्मा चली जाती है, जीव तो विनाशी है, तो उस समय और रोना या और नेगेटिव सोचना उस आत्मा को और दुख पहुंचाना होता है। और ऐसे टाइम में अगर हम लोग मैं ये नहीं कहता कि दुख नहीं होता, हर एक को होता है, हमें भी लगेगा वो, लेकिन उसको सहज रूप से शुभ भावना देना और वो करना, तो इस आत्मा को भी शांति मिलती है।
और एक बात, ये प्रैक्टिकल है, एक बार हम ऐसे इश्यू को डिस्कस कर रहे थे तो एक डॉक्टर ने कहा, उन्होंने कहा कि भी मेरे पिता की मृत्यु, लेडी डॉक्टर थे, मैंने कहा मेरे पिता की मृत्यु हुई तो मुझे बहुत दुख होता था, कई दिनों तक मैं रोती थी। एक दिन मैं पार्क में बैठी थी और रो रही थी तो अचानक मुझे विचार आया, कहते हैं कि जो शरीर त्याग देते हैं वो फरिश्ते बनते हैं, और अगर अभी मेरे पिता यहां से गुजरे फरिश्ते के रूप में और मुझे देखे कि मैं रो रही हूं तो उनको दुख होगा, तो मुझे रोना नहीं। कहते तुरंत मैंने आंखों पोंछ दिए, मैं नॉर्मल हो गई। तो ऐसे अगर सही पर्सपेक्टिव में देखे तो बहुत अच्छा हो। आपने शायद नरसिंह मेहता का उदाहरण भी सुना होगा, बहुत ही प्रसिद्ध भक्त हुए, तो उनकी पत्नी ने जब देह का त्याग किया तब तो उन्होंने लिखा भी हिंदी में, गुजराती में लिखा कि हिंदी में कहेंगे कि अच्छा हुआ कि जो जंजाल थी वह खत्म हो गई, अभी मैं शांति से भगवान का नाम लूंगा। पर हरेक का यह लक्ष्य नहीं होता है, परंतु फिर भी जब ये समस्या आती है तो उसमें हम पॉजिटिव थिंकिंग तो जरूर कर सकते हैं,
क्योंकि जो भी जीव जन्म लेता है उसे विनाश तो होना ही होता ही होता है। तो ये ट्रुथ जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उस फाइनल फेट की एक्सेप्टेंस बढ़ जाती है। और मैं समझता हूँ ऐसे समय पर ना केवल जिस व्यक्ति के साथ यह घटना होती है, लेकिन उसमें हमारा भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम लोग उसके दुख में और दुखी ना होकर उसको शुभ भावना दें, उसको शांति की वाइब्रेशंस दें, प्रकंपन दें। क्योंकि मैंने देखा है जो हमारी थिंकिंग है, पॉजिटिव थिंकिंग या शांतमय जो हमारी वाइब्रेशंस निकलती हैं, वह उस आत्मा को शांति जरूर देती है। और यदि हम ही उसके साथ मिल मिलकर जोर जोर कर और उसके दुख को बढ़ाएं और उस गई हुई आत्मा के बारे में ज्यादा चिंतन करें तो प्रॉब्लम हो जाती है।
और अब इसमें जो आपने सिचुएशन पूछा है वह अगर केस स्टडी के रूप में देखे तो कौन सी सिचुएशन है, उदाहरण के रूप में कि भी आपकी एज 25 साल की है और वाइफ की डेथ हुई, तो दिस इज एंटायरली डिफरेंट सिचुएशन,
डेफिनेटली
देन नो यू विल नीड टू टेक दिस सिचुएशन बीइंग ए चैलेंज ऑल्सो, कि भी बहुत बड़ा सदमा है आपके लिए परंतु उसको मैं चैलेंज के रूप में लूंगा
जी।
उल्टा ये भी कुछ कि भी मैं ऐसा कुछ पॉजिटिव करके दिखाऊंगा कि भी उस आत्मा को भी शांति मिलेगी, उस आत्मा को भी शायद गर्व होगा कि भी मैंने इतनी अच्छी तरह से जीवन को व्यतीत करके दिखाया।
लाइफ ऑलवेज मूव्स ऑन, ये तो है ही है, और किसी की रोके संसार कभी रोकता नहीं है। और आदमी को यही, मनुष्य को ध्यान रखना चाहिए कि चलते ही जाना है आगे, कभी अपनी जिंदगी में ब्रेक नहीं लगाना है, हर परिस्थिति चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव उससे लेकर आगे बढ़ते चले जाना है। डॉक्टर साहब एक ये सिचुएशन आपने क्लैरिफाई की, हालांकि अभी भी लगता है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन मैं समझता हूँ इसका अभ्यास या इसकी एक अवेयरनेस ही हमें इससे थोड़ा जल्दी बाहर ला सकती है, किसी भी मानव को हेल्प कर सकती है। एक और जो रियल लाइफ सिचुएशन देखी गई है वह ये है कि ओल्ड एज में, बुढ़ापे में लोगों को बहुत तनाव होता है। अक्सर आप देखिए कि कोई व्यक्ति है जिसे ऊंची पोस्ट पर था, अच्छी पोस्ट पर था, सडनली रिटायरमेंट आ जाता है और उसके बाद फिर एक तनाव आ जाता है। सडनली देखता है कि लोग मेरे अराउंड नहीं है, जो 10 लोग घूम रहे होते थे, क्योंकि आज कहा भी जाता है कुर्सी को सलाम है, तो वो अंदर से एक भाव आता है कि अब मुझे कोई पूछ नहीं रहा, और यह चीज अंदर डिप्रेशन लाती है, हीन भावना लाती है, ये बहुत बड़ा तनाव देती है। आप क्या कहना चाहेंगे, इससे कैसे डील किया जाए?
तो अब इसमें सबसे पहले तो पहले से ही तैयारी करनी चाहिए, और सिचुएशन में भी ऐसा हो सकता है, क्यों, हम जानते हैं कि रिटायर तो मुझे होना ही है एक दिन, तो अगर व्यक्ति 5-10 साल पहले अगर तैयारी करने लगता है तो उसे तनाव नहीं होगा कि रिटायरमेंट के बाद मैं अपने समय को प्रोडक्टिवली कैसे बिताऊंगा। सबसे बड़ा तनाव या डिप्रेशन इस बात को लेकर के होता है कि जो व्यक्ति सवेरे 6 बजे उठता था, तैयार करता था, ट्रेन पकड़ता था, सारा दिन व्यस्त होता था, और अचानक करके एक दिन आता है जब वो सवेरे, अरे आज तो कुछ काम नहीं है, बस अभी मुझे कहीं नहीं जाना है, तो उसी बात को सोच सोच के वह डिप्रेस्ड होता है। तो पहले से तैयारी करना एक बहुत अच्छा है। समझो तैयारी नहीं भी की तो भी आप सोचिए कि भी इस समय भी मैं कुछ प्रोडक्टिव कर सकता हूं। बहुत अच्छा उदाहरण अन्ना हजारे जी का है कि जो आर्मी में ट्रक ड्राइवर थे
जी।
और जब रिटायर हुए तो बताते भी है कि भी मैं निराश हो गया था, एक बार तो यह भी सोचा कि अभी जीवन जीने लायक नहीं है, परंतु जब अपने गांव गए उन्होंने देखा कि भी यहां तो बहुत काम करने के लिए आवश्यकता है, और उस समाज सेवा के अंदर जुट गए तो आज जग प्रसिद्ध हो गए। तो ऐसे रिटायरमेंट में भी आप सोचिए कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं।
या ये कहा जाए कि इसको एक प्लानिंग की तरह आप लेकर चलिए, क्योंकि ये सिचुएशन तो आनी ही होती है, और इसमें नेगेटिविटी ना ढूंढ के अपनी जो कैपेबिलिटीज है उसके अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्टिव काम आप करिए।
कभी भी देखिए कि आप टीचर है तो उस रूप का कोई काम कर सकते हैं, घर में बैठे नहीं रहिए, अभी भी बहुत सारे बच्चों को पढ़ने की आवश्यकता है।
जी हाँ,
जो गरीब है कि भी जिनको भी प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं मिल रही है, उनके लिए आप कुछ सचमुच बहुत बड़ा काम कर सकते हैं अगर आप करने लगे तो उस रूप से। वैसा नहीं भी है तो भी कोई बीमार है उनको आप कोई रीति से मदद रूप हो सकते हैं। हमें बस यह सोचना चाहिए कि कौन से कार्य में मुझे आनंद आएगा, भले उससे पेमेंट नहीं मिलती है कोई बात नहीं है, परंतु वह काम करने में मुझे सुख का अनुभव होगा,
एंजॉयमेंट,
आनंद का अनुभव होगा। ऐसा कार्य अगर बूढ़े व्यक्ति करने लगे तो उल्टा समाज की बहुत सारे प्रॉब्लम्स है वो भी सॉल्व हो जाएंगे।
तो ऐसी परिस्थिति अगर आती है जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें स्पिरिचुअलिटी का या मेडिटेशन का आपने इतना समय किया, उसमें इसका क्या रोल है, क्या महत्व है? क्योंकि एक आम व्यक्ति भी रिटायर जरूर होता है, और एक व्यक्ति मैं समझता हूं जो कि योगी जीवन जिसका रहा है, जो मेडिटेशन जिसने किया है, तो वह इस सिचुएशन को किस तरह डील करता है?
अगर उसने पहले से किया है तो उसके लिए बहुत अच्छा है। उल्टा वह तो यह सोचेगा कि मैं अधिक से अधिक समय मेडिटेशन के लिए दूं। अगर गहराई से सोचा जाए, हमें स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करना हो तो प्रतिदिन काफी समय देना चाहिए।
ये ना केवल मेडिटेशन के लिए समय देगा, लेकिन जब ये सिचुएशन आई उसको एक्सेप्टेंस बड़ी नेचुरल होगी उस चीज की। ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज,
एक्सेप्टेंस भी होगी उसकी, और दूसरा ये भी होगा कि वो ये भी सोचेगा कि मैं औरों को भी मेडिटेशन सिखाऊं।
जी बिल्कुल, अपनी कैपेबिलिटीज को और प्रॉपरली यूज करेगा।
तो औरों को अगर मेडिटेशन सिखाने लगेगा तो उससे उसको और भी फायदा होगा। मैंने बहुत सारे किस्से देखे हैं कि जो लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में भी कम से कम मैंने 100-200 तो ऐसे लोगों को जानता हूं कि जो क्योंकि मेडिटेशन का अभ्यास कर रहे थे तो रिटायरमेंट के बाद उनकी और आध्यात्मिक प्रगति हुई। जो नहीं करते हैं क्योंकि मानसिक रूप से तैयारी भी नहीं, तो उसके कारण उनको डिप्रेशन आने की संभावना हो सकती है। और एक रिटायरमेंट में करना चाहिए, आमतौर पर भी कहेंगे ओल्ड एज के लिए
जी,
कि हम दूसरों से एडजस्ट होने की कोशिश करें।
बिल्कुल, ये एडजस्टमेंट एक बहुत बड़ी,
बुढ़ापे का जो मैंने प्रॉब्लम देखा है, आपने बिल्कुल सही कहा कि सब कुछ आपके कंट्रोल में था, लोग आपको सलाम कर रहे थे, सारे घर को भी आप मैनेज कर रहे थे, बुढ़ापे में अभी बच्चे बड़े हो गए वो मैनेज करने लगे हैं, तो तब यह समझे कि अब मैं रिटायर हुआ हूं तो मुझे सचमुच बच्चों को सब कुछ सौंप देना। एक बहुत अच्छी बात बताई जाती है कि जो कंप्लीट है कि जिसमें यहां भी बुढ़ापे में क्या करे उसका अच्छा सा सॉल्यूशन मिल जाएगा। बच्चा 2-3 साल का हो तब तक उसके साथ राजा की तरह व्यवहार करो, उसे पूरी फ्रीडम दो, एकदम मुक्ति दो, जो चाहे वह उसे करने दो। फिर 3 साल से 10 साल तक का हो तो उसके साथ शिष्य की तरह व्यवहार करो, उसको अच्छे से सिखाओ, पूरी डिसिप्लिन लाओ। फिर 10 साल से 40 साल का हो जाए तब तक उसके साथ मित्र की तरह व्यवहार करो, बस उसे अपना मित्र बना लो। और 40 साल से बड़ा हो जाए फिर उसके साथ पिता की तरह व्यवहार करो, आप पुत्र बन जाओ। यह नहीं होता है, बुढ़ापे में जो प्रॉब्लम आता है कभी भी हम यही समझते हैं कि बेटा 40 साल का हो गया, हम समझते अभी तो 10 साल का है, मैं कहूं वैसे ही तुम करो, तो उसके कारण सारी समस्या आती
जी।
तब अगर हम यह समझे कि अभी वो मेरा पिता है, मैं उसका बच्चा हूं और मुझे उसके साथ एडजस्ट होना है, अपनी सारी दिनचर्या को ऐसी बनानी है कि बच्चे औरों के साथ अगर आप एडजस्ट होंगे तो बुढ़ापे में कोई समस्या
जी हाँ। यही सिचुएशन जैसे नेगेटिव हमने अभी आपको बताई थी कि कोई डेथ किसी के यहाँ हो जाती है, अगर कोई योगी फैमिली है, कोई मेडिटेशन प्रैक्टिस करने वाली है, उनके यहाँ अगर ऐसी सिचुएशन आती है डेथ की किसी रिलेशन की, तो वो इसको किस तरह एनालाइज और परसीव करेंगे?
ऐसे केसेस में तो हमारी ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में भी हमने देखा है
जी
कि उल्टा वो ज्यादा पीसफुल होते हैं। देखो मैं आपको एक रियल लाइफ सिचुएशन सुनाता हूँ, अभी भी आप उनको मिल सकते हैं। डॉक्टर जयंत पटेल है बड़ौदा में
जी,
कि जो जब मेडिकल की स्टडीज कर रहे थे तब ही ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विद्यालय के संपर्क में आए
जी।
और वो खुद बताते हैं कि मेडिटेशन से मेरे में कितना परिवर्तन आया। कहते हैं कि जब मैं मेडिटेशन नहीं कर रहा था, फाइनल MBBS में शायद पढ़ रहे थे, और उनकी मदर को कुछ ब्रेस्ट में प्रॉब्लम हुआ, तो डॉक्टर ने कहा कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो एकदम टेंशन में आ गए, काफी 6-8 मास तक पढ़ाई भी नहीं कर पाए, और बस वो फिर राजयोग का अभ्यास करने लगे, और करीब 1 साल ही बीता होगा, उनकी मदर और फादर दोनों का एक एक्सीडेंट में देहांत हो गया। वो स्कूटर पर जा रहे थे, ट्रक के साथ एक्सीडेंट हुई, ऑन द स्पॉट उनकी मृत्यु हो गई। तो बताते, देखो मैं सेम व्यक्ति हूं, 1 साल ही मैंने ध्यान का अभ्यास किया है, परंतु ध्यान से मेरे में इतना परिवर्तन आया कि मन एकदम स्टेबल था। हम वहां पर गए भी, डेड बॉडीज को ली तो भी मन स्टेबल था, लोगों को भी आश्चर्य होता था कि देखो ये कितना अपने मन को शांत रख पाए हैं। और वो घर में सबसे बड़े थे, उनकी छोटी बहन और भाई की भी उन पर जिम्मेवारी थी, फिर भी उन्होंने बताया कि सब कुछ मैंने स्टेबिलिटी से मैं इसको मैनेज कर पाया, क्योंकि मैं ध्यान का अभ्यास कर रहा था। तो ये बहुत बड़ा फोर्स है ऐसे केसेस में। तो
अच्छा डॉक्टर साहब, ये दो ऐसी सिचुएशन है हम आजकल देखते हैं बच्चों के अंदर। हाँ जी, बहुत तनाव आ गया है बच्चों में अलग अलग सिचुएशंस में, एक तो पढ़ाई का बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, दूसरा एडिक्शंस बहुत हो गए हैं, ड्रग एडिक्शन, तो ऐसे तनाव को कैसे दूर किया जाए?
एक दूसरे से रिलेटेड है,
बिल्कुल रिलेटेड है, आप सही कह रहे
हैं। तो जो एग्जाम का उनका टेंशन है, उसके लिए मैं कहूंगा कि चैलेंज के रूप में लो, अगर वो चैलेंज के रूप में लेंगे तो कैपेसिटी बहुत बढ़ जाएगी
जी।
और एक सरल सी बात बच्चों को मैं हमेशा बताता हूं, मैं कॉलेज के विद्यार्थियों को कई बार ये उदाहरण देता हूं, भले सरल सा है परंतु उससे बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। मेरे जीवन में भी इस बात को सोच करके परिवर्तन आया है कि अगर विद्यार्थियों को और 5 या 7 साल पढ़ना है, जब तक प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन मिल जाए फिर बड़ा सरल होता है, और दूसरे 50 साल वह जीने वाले हैं, तो उनके बीच में 2 चीजों की च्वाइस होती है। एक तो यह है कि भी 5 साल पढ़ाई नहीं करें, बस ऐसे ही समय को बिता दे, कोई उनको फोर्स नहीं कर सकते, माता पिता अच्छी स्कूल कॉलेज में भेज सकते और कोई ज्यादा फोर्स नहीं कर सकते, और अगर वह ऐसा करेंगे तो उनके पास अच्छी क्वालिफिकेशन नहीं होगी, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी भी इतनी अच्छी नहीं होगी, तो जो दूसरे 50 साल वह बिताने वाले उसमें बहुत कष्ट सहन करना पड़ेगा, बहुत तकलीफ सहन करनी पड़ेगी। और दूसरा सोल्यूशन है कि 5 साल थोड़ा इंटरेस्ट लेकर के पढ़े, मोटिवेशन से पढ़े, और ऐसा अगर करेंगे तो उनकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी बढ़ेगी, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होगा, तो और जो 50 साल है उसमें सब कुछ जीवन में मिलेगा, जो वो चाहते हैं वैसे धन लग्जरीज वह सब कुछ मिलेगा। तो 2 के बीच में पसंद करना होता है।
ऐसी सिचुएशंस में माता पिता को, क्योंकि उनको भी बहुत स्ट्रेस होता है, बच्चों से ज्यादा आजकल माता पिता परेशान हो जाते हैं कि हमारा बच्चा बहुत दुखी है, बहुत स्ट्रेस में है, हमें देखा नहीं जाता, तो उनको किस तरह कूप अप करना चाहिए?
माता पिता को एक तो यह करना चाहिए कि बच्चों को सपोर्ट करें, जो जो बातों में भी माता पिता बच्चों को सपोर्ट कर सकते हैं उसमें सपोर्ट करें। हाँ भी, जैसे कि भी बच्चों की आवश्यकता, कई बार बच्चा कहते हैं मैं जल्दी उठूंगा, अगर मुझे एक कप का चाय मिल जाए तो मैं जल्दी उठ सकता हूँ, तो अभी मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अधिकतर माताएं करती है, लेकिन फिर भी स्पेशल अटेंशन देना चाहिए, पिता को ज्यादा ध्यान देना चाहिए। कई बार मदर्स तो का कोऑपरेशन मिल जाता है लेकिन फादर का कोऑपरेशन नहीं मिल पाता, कि फादर कहेगा मैं आके टीवी देख रहा हूं, अगर वो टीवी देख रहा है तो फिर बच्चे के लिए बड़ा मुश्किल है कि वो कंसंट्रेशन से पढ़े।
जी हाँ, बिल्कुल।
तो तब एक प्रकार से उनको ये सहयोग मिले तो बहुत अच्छा है, और मोटिवेट भी करे। मेरे एक मित्र है जो स्किन स्पेशलिस्ट है, तो उन्होंने खुद मुझे बताया, वो बड़े अच्छी उनकी प्रैक्टिस है, तो कहते मैं घर जाके भले 11 से 12 भी बच्चे को पढ़ाता हूं। तो दिस इज एन इंस्पायरिंग एग्जांपल कि भी फादर को कैसे, भले वो प्रोफेशनल भी हो तो भी बच्चे के लिए टाइम दे, तो ये भले वो 1 घंटा पढ़ाना बहुत बड़ी चीज नहीं है।
डॉक्टर साहब, ये तो हमारी कुछ रियल लाइफ सिचुएशंस आपने हमें बताई, पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि मेडिटेशन, योग खासकर जो आप प्रैक्टिस करते हैं इतने 30 सालों से, वह इसमें किस प्रकार से मदद करता है, उसका क्या रोल है, उसकी क्या साइंटिफिक बेसिस है, किस तरह वे एक व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाता है, उसकी थिंकिंग में परिवर्तन लाता है?
ये बड़ा प्रैक्टिकल सवाल है। सबसे पहला तो जो फायदा है मेडिटेशन का, कि मेडिटेशन से आप शरीर और मन को रिलैक्स कर पाते हैं, बल कहना बड़ा सरल है कि रिलैक्स हो जाओ, लोग भी एडवाइस देते हैं, परंतु करना सबसे मुश्किल होता है। तो इसलिए जब हम मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं, 5 मिनट भी आप अच्छे से ध्यान का अभ्यास करो, आपका मन रिलैक्स हो जाएगा और रिलैक्सेशन एक स्ट्रेस का एंटीडोट है
जी।
दूसरी जो बात है कि मेडिटेशन से ये बिलीफ सिस्टम में ही परिवर्तन आता है कि भी लोग समझते हैं कि भी स्ट्रेस तो आनी है, जीवन मतलब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। मेडिटेशन से हम यह समझते हैं कि इन सभी चीजों से आप ऊपर उठ सकते हैं और सचमुच एक शांतमय, एक पॉजिटिव जीवन है आप व्यतीत कर सकते हैं। और एक जो बहुत बड़ा फायदा मैंने मेडिटेशन से देखा है कि जो सिखाने से नहीं होता है, कितने भी सेमिनार्स ले लो, उन्हें बातें करो कि एटीट्यूड्स को चेंज करो, एटीट्यूड को चेंज करना बहुत जरूरी है, कहीं एग्जाम्पल दे दो, तो भी लोगों की एटीट्यूड चेंज नहीं होती है। लेकिन जब व्यक्ति ध्यान का अभ्यास करने लगता है, ब्रह्म कुमारी सेंटर पर भी मैंने देखा है कि भी 1-2 मास ही आने लगते हैं तो स्वाभाविक ही उनकी एटीट्यूड में चेंज हो जाता है। वह जो बातें हमको बताते हैं उसमें भी परिवर्तन आ जाता है, जो
उनके चेहरे ही परिवर्तन।
हाँ, बस मैं यही बताने जा रहा हूं, क्योंकि चेहरे पे ही ये रिफ्लेक्ट हो जाता है कि देखो ये व्यक्ति कितना शांत है। कोई ऐसे ही देखे तो भी उसे लगता है कि ये व्यक्ति शांत है। और एक जो बहुत बड़ी बात है मेडिटेशन की कि आप स्वाभाविक ही पॉजिटिव थिंकर बनते हैं और डीकंडीशनिंग होता है। आज बहुत सारे हमारे प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि हम कंडीशन्ड हो गए हैं, एक प्रकार से सोचने में, कर्म करने में भी कंडीशनिंग हो गई।
बेसिकली देखा जाए तो कंफर्ट जोन्स हमारे बन गए।
हाँ,
क्योंकि जो हम करना चाहते हैं या जो हम सोचना चाहते हैं हम वही सोचते हैं और हम सोचते हैं कि यही अच्छा है।
हाँ,
कोई भी व्यक्ति या कोई थॉट उससे बाहर आता है तो हम लोग उसको एक्सेप्टेंस नहीं ला पाते हैं। मेडिटेशन हमें एक फ्रीडम ऑफ थॉट्स देता है।
हाँ जी, बहुत अच्छा कहा कि ये कंफर्ट जोन से आप सहज ही बाहर आ जाते,
हैं।
और फिर जीवन में जो आनंद का अनुभव होना चाहिए वो आनंद का अनुभव हो सकता है,
हैप्पीनेस जो।
और एक जो बात है, गहरी बात है वास्तव में मेडिटेशन की, कि जैसे कि पानी को गैस पे रखेंगे तो गर्म होगा, गैस से हटा दो 4-5 घंटे के बाद क्या होगा, फिर से ठंडा होने लगेगा। तो बस ऐसा ही है कि भी जब तक आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हो तो अपने को शरीर मान के ही काम कर रहे हो
जी।
तो क्या किया आपने, आत्मा को गैस पे रख दिया, बॉडी के साथ आपने रखा है, बॉडी मान के ही कर रहे हो, तो ऑटोमेटिक आत्मा टेंशन में आने वाली है, अशांत होगी, डिस्टर्ब होगी। परंतु जब आप मेडिटेशन का अभ्यास करते हो, यह समझते हो कि मैं आत्मा हूं, शरीर से भिन्न एक दिव्य चेतना हूं, तो स्वाभाविक ही आत्मा के जो मूल गुण हैं, शांति, आनंद, प्रेम, उसका आप अनुभव करने लगते हैं। और एक बहुत बड़ी एक पॉजिटिव मेडिसिन है, जितना मेडिसिन काम नहीं करेगी उतना यह मेडिटेशन का जो अनुभव है वह मेडिटेशन का अनुभव है वह काम करता है।
देखा जाए तो योग, ये जो मेडिटेशन है, ये हमारे जीवन के हर पहलू पर प्रभाव डालता है। एक हमारी थिंकिंग को पॉजिटिव बना देता है, एक्सेप्टेंस पार हमारे अंदर बढ़ जाती है, टॉलरेंस पार ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, या यूं कहें कि आर्ट ऑफ लिविंग, जो रियल आर्ट ऑफ लिविंग है वह हमें आ जाता है। एंड हमें कोई, जो हम ब्रेक्स की बात करते थे या रिलैक्सेशन टेक्निक्स की बात करते थे, रिलैक्सेशन ऑटोमेटिकली कम्स। मतलब पॉजिटिव सिचुएशन हो, नेगेटिव सिचुएशन हो, लेकिन जो मेडिटेटिंग पर्सन है उसकी लाइफ में एक स्थिरता आ जाती है
ऑटोमेटिकली। और एक जो बात होती है कि हम परिस्थिति को सही पर्सपेक्टिव में देख पाते हैं।
पर्सपेक्टिव
आमतौर पर व्यक्ति सही पर्सपेक्टिव में नहीं देख रहा।
बिल्कुल, जैसे हमने कहा भी था कि वी सी द सिचुएशंस एज दे आर, उसी को उसी के रूप से ही देखते हैं, ऐसे नहीं कि जैसे हम उसे देखना चाहते।
तो इसलिए मेडिटेशन तो बहुत जरूरी है। कोई भी व्यक्ति को थोड़ा भी तनाव है तो मैं कहूंगा कि मेडिटेशन का जरूर अभ्यास करो, यहां तक कि आपको तनाव नहीं है तो भी करो, क्योंकि तनाव विदाउट नोटिस आना है
जी,
नहीं कह के नहीं आएगा कि 2 दिन के बाद ये प्रॉब्लम मैं आने वाला हूं। तो इसके कारण हर व्यक्ति को चाहिए कि वह ये जो फाउंडेशन टेक्निक है, वह मेडिटेशन की टेक्निक को समझ ले कि जो बिना मूल्य वास्तव में उपलब्ध है
जी।
और फिर थोड़ा भी अभ्यास करे तो अनेक फायदे होंगे।
और मैं समझता हूं कि ये मेडिटेशन जो व्यक्ति प्रैक्टिस करता है उसकी लाइफ ही एक बैलेंस्ड हो जाती है। मतलब ऐसा नहीं कि मॉर्निंग के टाइम में मेडिटेशन कर रहा है तो वह रिलैक्स है और इवनिंग में जब काम पे जा रहा है या मॉर्निंग में काम पे जा रहा है तो परेशान है। नहीं, एक लाइफ में एक बैलेंस, एक स्थिरता आ जाती है, एक खुशी आ जाती है जिसको लोग अप्रिशिएट करते हैं कि इज अ वेरी बैलेंस्ड पर्सन और हर सिचुएशन को इजिली एनालाइज करके लाइफ, जैसे हमने रियल लाइफ सिचुएशंस की बात की, मैं समझता हूँ हर व्यक्ति के लिए अलग अलग परिस्थितियां होती होंगी और अलग अलग परिस्थितियों का एक ही आंसर, एक ही सोल्यूशन है कि प्रैक्टिस सम मेडिटेशन, गिव टाइम टू योरसेल्फ, अपने आप को समय दीजिए, अपने आप को कुछ ऐसा समय दीजिए जिसमें हम इंट्रोस्पेक्ट कर पाए, अपना संबंध स्वयं परमात्मा से जोड़ पाए।
बहुत अच्छी तो बात है कि कर्म योगी बनना है, जो आपने कहा ना कि सवेरे सिर्फ थोड़ा समय
मेडिटेशन, बिल्कुल
हाँ, कि आप रेलवे स्टेशन पे भी खड़े हैं, मेडिटेशन इज अ कॉन्शियसनेस ट्रेनिंग,
स्टेट ऑफ माइंड है, स्टेट ऑफ माइंड। ऐसा नहीं कि जरूरी आपको म्यूजिक चाहिए, आपको अगरबत्ती चाहिए, आपको साइलेंस चाहिए। तो डॉक्टर साहब, मेडिटेशन तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन ये मेडिटेशन के लिए व्यक्ति कहाँ जाए, किधर वो मेडिटेशन सीखेगा, क्या आप इसके बारे में कुछ बता सकते हैं हमें?
जरूर, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के भारत में करीब 7,000 से अधिक सेवा केंद्र है
जी।
आप देखेंगे कि भी जो बड़े शहर है कि भी बॉम्बे दिल्ली, जिसमें 100 जितने सेवा केंद्र है, हर एक जगह पर आप नजदीक में 2-3 किलोमीटर में, बॉम्बे में देखो तो ईस्ट वेस्ट में भी आपको 2-2 सेंटर बनाए गए हैं
जी।
ऐसे ही करीब करीब डिस्ट्रिक्ट प्लेस में भी आपको सेंटर्स मिलेंगे, यहां तक भी यह लक्ष्य रखा गया है कि भी गांव में भी छोटे छोटे सेंटर हो। तो अगर थोड़ा सा भी पूछा जाए तो नजदीक में जो सेवा केंद्र हो वहां पर विना मूल्य यह कोर्स है ऑफर किया जाता है।
हाँ डॉक्टर साहब, मेडिटेशन की टेक्निक्स के बारे में तो और डिटेल में हम आपसे चर्चा करेंगे अपने अगले एपिसोड में। अभी हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि आपने बहुत ही सुंदर रीति से हमें बताया कि मेडिटेशन से किस प्रकार हम रियल लाइफ सिचुएशंस को डील कर सकते हैं और अपनी जिंदगी से तनाव को हटा सकते हैं। तो आपने देखा कि रियल लाइफ सिचुएशंस, तनाव से परिपूर्ण सिचुएशंस हमारे लिए और आपके लिए, सबके लिए डिफरेंट होती हैं, लेकिन इनका डील करने का तरीका, इनको जीतने का तरीका केवल एक है, वह है राजयोग मेडिटेशन। यदि हम मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं तो इन सिचुएशंस पर हम इजीली विजय प्राप्त कर सकते हैं। यह मेडिटेशन ब्रह्मा कुमारीज में मुफ्त सिखाई जाती है और यदि आप इंटरेस्टेड हों तो अपने नियरेस्ट ब्रह्मा कुमारी सेंटर से संपर्क कर सकते हैं, और यदि आपको नहीं मालूम उनका एड्रेस तो आप हमें लिख भी सकते हैं। हमारा ईमेल है omshantistudio@gmail.com। आप हमें फोन भी कर सकते हैं, हमारा फोन नंबर है 9873666555। आशा है आपको यह हमारा एपिसोड पसंद आया होगा। हम अगले शुक्रवार अपनी चर्चा मेडिटेशन के विषय में, कि मेडिटेशन क्या होती है, कैसे किया जाता है और उससे क्या क्या लाभ हो सकते हैं, डॉक्टर साहब से जारी रखेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे प्रोग्राम माइंड मैटर्स में। आज हम आपके समक्ष डिस्कशन करेंगे डॉक्टर गिरीश पटेल के साथ मेडिटेशन के विषय में। योग एक प्राचीन प्रक्रिया मानी गई है। मेडिटेशन आजकल कहा जाए तो इट्स अ फैशन ऑफ टुडे ऑल्सो। हर व्यक्ति चाहे बूढ़ा हो चाहे जवान हो किसी न किसी प्रकार की मेडिटेशन के साथ एसोसिएट होना चाहता है। पर यथार्थ मेडिटेशन आखिर क्या होती है, मेडिटेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इसका हमारी लाइफ में क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और इसकी प्रक्रिया के क्या क्या स्टेप्स हैं, आज हम अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर गिरीश पटेल को। डॉक्टर साहब आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
नमस्कार।
जैसा कि आपको ज्ञात है कि डॉक्टर गिरीश पटेल एक फेमस साइकोथेरेपिस्ट हैं और मेडिटेशन एक्सपर्ट हैं। पिछले 30 वर्षों से ब्रह्मा कुमारीज के साथ डॉक्टर साहब मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब मेडिटेशन के बारे में अगर हम बात करें, जैसा कि आपने बताया स्ट्रेस तो हमारी लाइफ में बहुत रहता है, मेडिटेशन इस कंक्लूजन पर तो हम पहुंच गए हैं कि की रिसोर्स है स्ट्रेस को अपनी लाइफ से दूर करने के लिए। अगर देखा जाए कि एक टेक्निक नेम की जाए जिससे हम स्ट्रेस पर संपूर्णतः विजय प्राप्त कर सकते हैं वह मेडिटेशन है या योगाभ्यास है। तो मेडिटेशन आखिर क्या होती है, बल्कि मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि मेडिटेशन, रिलैक्सेशन और कॉन्सेंट्रेशन, ये तीन वर्ड बहुत कॉमनली हम लोग यूज करते हैं, तो इनमें बहुत थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, क्या आप इसे स्पष्ट करेंगे?
अच्छा, देखो दो तीन बातें आपने पूछी है, साथ में एक एक करके मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ, आपने शुरू में बहुत ही अच्छा कहा इंट्रोडक्शन में कि मेडिटेशन आज फैशन बन गया है, योग शब्द बहुत ही पॉपुलर हुआ है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि जो पॉपुलर हुआ वो योग नहीं है। कि आज कहेंगे योग आसन पॉपुलर हुए हैं, एक्सरसाइज पॉपुलर हुई है, लेकिन सचमुच मेडिटेशन इज लिटिल डिफरेंट देन दैट। अगर हम देखें तो फाउंडेशन जो डेफिनेशन है मेडिटेशन की वह है कम्युनियन ऑफ इनर सेल्फ विद द सुप्रीम बीइंग। वो जो कम्युनियन है दैट इज एक्चुअली मेडिटेशन। सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन वह मेडिटेशन नहीं है, सिर्फ रिलैक्सेशन वह भी मेडिटेशन नहीं है। अभी जो आपका इससे रिलेटेड प्रश्न है कि इसके बीच में फर्क क्या है, तो मेडिटेशन से रिलैक्सेशन मिलता है, परंतु रिलैक्सेशन बाय इट्सेल्फ मेडिटेशन नहीं है
जी।
या तो ऐसा भी कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि मेडिटेशन इज रिलैक्सेशन प्लस और बहुत कुछ चीजें हैं। रिलैक्सेशन तो है ही, इससे भी अलावा उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं
जी। डॉक्टर साहब ये कॉन्सेंट्रेशन इज इट अ पार्ट ऑफ मेडिटेशन?
ऐसा भी नहीं कहेंगे कि मेडिटेशन करते समय कॉन्सेंट्रेशन बनता है, या तो जो अच्छा शब्द है एब्सॉर्प्शन, कि मेडिटेशन करते करते आप उसी अवस्था में खो जाते हैं।
बट नॉट ऑल कॉन्सेंट्रेशन
इज नॉट मेडिटेशन। बिल्कुल।
तो मेडिटेशन एक अपने आप में अलग एंटिटी है, है। आप कहेंगे तो एक आम व्यक्ति के लिए अगर हमें उसे समझाना हो कि मेडिटेशन क्या होती है, व्हाट इज मेडिटेशन, आप इसको कैसे स्पष्ट करना है?
तो थोड़ा अगर डीप में जाना हो
जी,
देयर कैन बी टू लेवल्स, लेकिन कई हमारे दर्शक थोड़ा डीप भी उसको समझना चाहेंगे
जी।
तो मेडिटेशन और ध्यान में फर्क है। वास्तव में ध्यान का जब इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने गए तो कोई प्रॉपर शब्द नहीं मिला, इसलिए उसको मेडिटेशन कह दिया, परंतु वास्तव में मेडिटेशन करते चिंतन करना। ध्यान में भी भले शुरू में चिंतन है या नहीं कि चिंतन नहीं है
जी,
परंतु ध्यान का सही अभ्यास करे तो अंत की जो स्थिति है उल्टा आप चिंतन से परे जाते हो। इसलिए किसी ने तो एक्सपर्ट ने ऐसे भी कहा कि भी मेडिटेशन का अर्थ है सोचना और ध्यान का अर्थ है उससे परे जाना है, क्योंकि ध्यान जब चाइना में गया तो चान हो गया, जब जापान में गया तो जेन हो गया। तो इसलिए अंतिम स्टेज एक ऐसी बननी चाहिए, बस थोड़ा भी समय बने, ये हो सकता है 10-15 सेकंड बन सकती है, कि 10-15 सेकंड की स्थिति में आप टोटली एब्सॉर्ब हो गए हैं और बस तब कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो अनुभूति रह गई है
एक्सपीरियंस।
हाँ, परमात्मा से जो शक्तियां प्राप्त करना वह अनुभूति सिर्फ अंतिम लेवल पर बच जाती है।
डॉक्टर साहब मैंने जो थोड़ा बहुत पढ़ा है उसके बारे में मैं ये कहूंगा कि मेडिटेशन एक लैटिन वर्ड है विच इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड मेडेरी, MEDER, और इसको एक हीलिंग प्रोसेस माना गया। दिस लिटरली मीन्स टू हील। तो वी बीइंग फिजिकल डॉक्टर्स हम शरीर को हील करते हैं, तो ये भी लोगों ने बहुत सुंदर रूप से कहा है कि मेडिटेशन इज द हीलिंग प्रोसेस ऑफ सोल, क्योंकि मैं समझता हूँ द वर्ड मेडिटेशन ये इमीडिएटली हमारा ध्यान दिलवाता है शरीर से परे एक अलग एंटिटी पे, क्योंकि मेडिटेशन शरीरों की नहीं हो सकती। मैं समझता हूँ जैसे आपने बोला इट्स कम्युनियन ऑफ सोल विद सुप्रीम सोल, इसी प्रकार जो मेडिटेशन है या योग है, यथार्थ योग है, वो आत्मा का परमात्मा के शायद मंगल मिलन है, और जो आत्मा को हील करता है, और आत्मा की हीलिंग से ही ऑटोमेटिकली शरीर की हीलिंग धीरे धीरे हो ही जाती है।
बिल्कुल ठीक है, और वास्तव में कई बार वो कम्युनियन होता ही नहीं है।
जी बिल्कुल,
तो मैंने थोड़ा गहराई से इतने वर्षों के अनुभव में कुछ चिंतन किया है कि भी मेडिटेशन के अभ्यास में, या तो जब कोई भी स्पिरिचुअल जब व्यक्ति प्रोग्रेस करता है तब क्या स्टेजेस होती है। मैंने सोचा कि वह छह अवस्थाओं से गुजरता है
जी।
कि भी पहली स्थिति है कि हम शरीर को भूलने का पुरुषार्थ करते हैं। अब जो कुछ भी करें, पूजा पाठ कर रहे, मंदिर में जाते हैं, मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, तो पहला लक्ष्य यह है कि व्यक्ति शरीर को भूलने की कोशिश करता है, अधिकतर वहीं अटक
जाते हैं,
शरीर को भूल ही नहीं पाते। कुछ कहो कि भी 40-30% लोग हैं कि जो शरीर को कुछ हद तक भूल पाते, तो वो सेकंड स्टेज पर पहुंचते कि सचमुच शरीर के भान से परे गए। और जैसे ही व्यक्ति शरीर के भान से परे जाता है, ऑटोमेटिक जो आत्मा के मूल गुण है उसका अनुभव करता है। वह तीसरी स्थिति है कि आत्मा के जो मूल गुण है, शांति, प्रेम, आनंद, उसका वो अनुभव करने लगता है। फिर फोर्थ स्टेज है कि भल वो परमात्मा से संबंध जोड़ने की भी कोशिश कर रहा है, परंतु जुटता नहीं है वास्तव में, वो डायरेक्ट कनेक्शन जो जुटना चाहिए वह नहीं जुटता है। भल उसे अच्छा लग रहा है, यह भी लग रहा है कि मैं प्रगति कर रहा हूं, परंतु वास्तव में वातावरण में भी नेगेटिव कंपन भी है और पॉजिटिव कंपन भी है। तो वातावरण के जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है उसको वह कैच करने लगता है, और जब वो उस वाइब्रेशंस को कैच करता है तो भी सचमुच प्रगति तो होती है, परंतु फिर भी वो लिंक नहीं है। पांचवी स्टेज थोड़े से लोगों की बनती है कि डायरेक्ट परमात्मा से आपका संबंध जुटे। वह कहेंगे 4-5% मैक्सिमम होंगे कि जिनकी यह अवस्था बनती है कि उन्हें एक तो डायरेक्ट परमात्मा का परिचय होता है और वह संबंध जोड़ पाते हैं। और फिर जो सिक्स स्टेज है वो शायद हार्डली 0.5% या 1% की बनती होगी, वह है कि आप परमात्मा के गुणों को औरों तक पहुंचाने की चैनल बनते हो।
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
तो वह हाईएस्ट स्टेज है। सच में लक्ष्य यह रखना चाहिए कि डायरेक्ट परमात्मा से संबंध जोड़ना, इनडायरेक्ट नहीं, वाया वाया नहीं, सीधा मेरा परमात्मा से संपर्क हो, और फिर वो अनुभव इतना अच्छा करूं कि मैं परमात्मा के गुणों को औरों तक पहुंचाने की एक चैनल बन जाऊं।
और अक्सर देखा गया है कि हम दर्शकों को स्पष्ट करें कि हम अगर किसी व्यक्ति से पूछें कि आपका यथार्थ परिचय क्या है, तो हम लोग केवल शारीरिक इंट्रोडक्शन दे पाते हैं। हम ये कहेंगे हम डॉक्टर हैं, हम लॉयर हैं, हम इंजीनियर हैं, हम फलाना, अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग परिचय होता है। और किसी व्यक्ति से पूछें कि क्या आपको पूरे दिन में, बल्कि ये प्रश्न अपने दर्शकों से भी पूछ सकते हैं कि आप में से कोई व्यक्ति को यह ध्यान रहा कि आप ये शरीर नहीं आत्मा है, आत्मा की एंटिटी साइंटिफिकली भी प्रूव हो चुकी है और स्पिरिचुअली एग्जिस्टेंस तो सालों से मानी जा रही है। तो मेरे ख्याल से कोई भी इस बात से डिसएग्री नहीं होगा कि हम ये जानते ही नहीं कि हम शरीर नहीं, हम एक आत्मा है। तो पहले ही स्टेप पर जब हम फॉल्टर कर जाते हैं, हम यह समझ ही नहीं पाते कि जो हम हैं वह हम अपने आप को जानते नहीं। और जो हम नहीं हैं हम पूरे दिन उस भान में, शरीर के भान में घूमते रहते हैं। तो मेडिटेशन किसी भी प्रकार को हम पकड़ें, हम यथार्थ मेडिटेशन कर ही नहीं सकते। तो यथार्थ मेडिटेशन की जो बिगनिंग होती है वो सेल्फ रियलाइजेशन
से होती है। या तो ये भी कहेंगे, इसमें थोड़ा ऐड करना चाहूंगा कि हमने बचपन से सुना है कि मैं आत्मा हूं, या तो अलग अलग रूप से इस बात को, परंतु कभी अभ्यास नहीं किया।
बिल्कुल अभ्यास नहीं किया।
तो मेडिटेशन में उसी बात का हमें अभ्यास करना है,
और जैसे ही हम अभ्यास करते चले जाते हैं तो वो स्थिति जो कि रियल स्थिति है हमारी, जो हमारी रियल एंटिटी है, उसकी स्थिति में हम इजीली सेट हो जाते हैं। और आत्मा का पिता जो है वो परमात्मा स्वतः ही है। तभी परमात्मा को बड़ी इंटरेस्टिंगली परम शरीर नहीं कहा जाता, परमात्मा ही कहा जाता है।
और आत्मा के बारे में जो आपने कहा कि हम अपने आप को भी कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग, मतलब ह्यूमन प्लस बीइंग है।
ह्यूमन इज ह्यूमस,
हाँ ह्यूमस
शरीर, और बीइंग इज दी साइकी। डॉक्टर साहब, ये जो आत्मा है क्या इसकी एग्जिस्टेंस को साइंटिफिकली भी अब काफी सपोर्ट मिला है रिसर्च में?
मैं कहूंगा 100% सपोर्ट मिला है। बहुत सारी चीजें आज देखी जाए, हम अलग अलग रीते से शुरू कर सकते, जो सिंपल चीज कहे कि जो स्टोरीज ऑफ री इंकारनेशन, जिन बच्चों को अपना जन्म याद आया है, ऐसी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, लोग इंटरेस्ट से पढ़ते हैं इसको अखबारों में भी। एक बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट ने कहा कि हो सकता है कि इसमें कुछ एग्जाम्पल्स मेडअप स्टोरीज भी है, झूठी स्टोरीज है, और कोई स्वार्थ के कारण ऐसा कहा, परंतु एक एग्जाम्पल भी अगर मैं ये सत्य सिद्ध कर दे कि बस उसी बच्चे का अनुभव है कि उसे अपना पूर्व जन्म याद आया, तो वो आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध करता है,
कर देता है इनडायरेक्टली, क्लियर।
हाँ जी, और जो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस हुए हैं वह भी शो करता है कि सचमुच ऐसी एनर्जी है। हमने भी पहले बहुत कुछ सुना था कि भाई किसी की मृत्यु हो गई, उसको स्मशान घाट तक भी ले गए, लेकिन फिर से उसका पैर हिलने लगा तो लगा कि भाई तो जीवित है, उसे वापस ले आए। परंतु अब तो ऐसे हजारों केसेस होते हैं, क्योंकि साइंटिफिक प्रोग्रेस भी हुआ है, वो जो रिवाइव करने की डिफरेंट टेक्निक्स है वो बहुत ही पावरफुल हुई है
जी।
तो जो पेशेंट्स अपने अनुभव सुनाते हैं उससे भी ये सिद्ध हो चुका है कि सचमुच और कोई दिव्य चेतना हमारे में है।
और बल्कि साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में जो इन्होंने इलेक्ट्रोड स्टडीज की,
हाँ जी,
उसमें साइंस में कैलिफोर्निया में इन्होंने बताया है कि एक स्पॉट, इसे गॉड स्पॉट इन्होंने कहा है, और वहां पर उन्होंने जिसको हाइपोथैलेमो हाइपोफिशियल फोसा जो फ्रंट में भ्रिकुटी जिसे कहते हैं, वहां पे आत्मा का लोकस इन्होंने डिफाइन
भी किया।
तो ये बहुत ही क्लियर एविडेंस तो प्रूव कर ही चुकी है कि हम ये शरीर नहीं, हम ये।
और एक अच्छा जो बहुत ही अच्छा एविडेंस जो विच इज ए डायरेक्ट एविडेंस, ये जो सब हमने डिस्कस किया उससे थोड़ी इनडायरेक्ट है, कि रशिया में एक पावरफुल क्रिलियन फोटोग्राफी के द्वारा जो व्यक्ति की मृत्यु हो रही थी, ऐसे लोगों की उन्होंने सीरीज ऑफ फोटोग्राफ्स ली, एवरी सेकेंड वो पावरफुल क्रिलियन फोटोग्राफी से फोटोग्राफ लिए, तो देखा कि एक क्षण आती है तब तक एक ज्योति का भी उसमें चित्र आ रहा है और सारे औरा का भी पिक्चर आ रहा है, परंतु एक क्षण के बाद जो फोटोज लिए गए हैं उसमें वो ज्योति का फोटो नहीं आता है। एक बहुत ही अच्छी किताब है साइकिक डिस्कवरीज बिहाइंड एन आयरन कर्टन, जिसमें इसका जिक्र भी किया गया है। तो साइंटिस्ट बताते हैं कि भी यह कोई नॉन फिजिकल एनर्जी थी, अगर वो फिजिकल एनर्जी होती तो धीरे धीरे कम होती, मृत्यु के बाद उसे आधा घंटा एक घंटा लगता, परंतु तो बस एक सेकंड पहले के फोटो में वो लाइट आ रही है, नेक्स्ट फोटो में वो लाइट नहीं है। वह भी एक डायरेक्ट एविडेंस है कि सचमुच हमारे में ऐसी स्पिरिचुअल एनर्जी है।
डॉक्टर साहब, ये जो है ये बेसिक मेडिटेशन का हमें पता लगा कि आत्मा और परमात्मा का मिलन है, क्या मेडिटेशन एक स्टेज्ड प्रोसेस है, एक स्टेप्ड प्रोसेस है? क्योंकि अक्सर कहा जाता है ये मेडिटेशन इज वेरी डिफिकल्ट टू डू, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है?
वास्तव में बड़ा सरल है, उसके अगर स्टेजेस को हम समझ ले और उसे फॉलो करें तो सहज हर व्यक्ति अच्छा योगी बन सकता है। उसको हम 5 स्टेजेस में समझ सकते हैं। पहली तो जो स्टेज है वह है इंटरनलाइज, अर्थात कि अंतर्मुखी बनो। दूसरी स्टेप है चैनलाइज, कि हमें मन को मोड़ना है, मारना नहीं है। तीसरा है विजुअलाइज, कि जो सत्य का हम अनुभव करना चाहते हैं, जिस परमात्मा से मन बुद्धि को जोड़ना चाहते उसको विजुअलाइज भी करें। फिर चौथा है डिविनाइज, उसमें दिव्यता को भी ऐड करें
जी।
जितना आप में दिव्यता होगी तो ऑटोमेटिक फिफ्थ स्टेज तुरंत बनेगी कि जो है रियलाइज। तो ये 5 स्टेजेस को प्रॉपरली अगर हम अभ्यास करें तो अच्छे योगी बन सकते हैं।
इनकी डिटेल्स आप ऐसा बताएंगे, स्पष्ट करेंगे,
हाँ जी, हाँ।
क्योंकि ये नाम तो बहुत अच्छे और इजी टू रिमेम्बर हैं, लेकिन कैसे इनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया जाए?
तो फर्स्ट स्टेज है वो है इंटरनलाइज, कि आप एक सिंपल पोस्चर में भी बैठो, या आवश्यक नहीं है कि भी बहुत ही डिफिकल्ट पोस्चर, कि पद्मासन में बैठना पड़ेगा, जैसे हम कुर्सी में बैठे आराम से बैठिए, भले कमर सीधी हो, बॉडी पोस्चर आपकी थोड़ी रिलैक्स हो। और फिर इंटरनलाइज अर्थात कि भी अंतर्मुखी बनना है, थोड़ा सा आप सचमुच अंदर डीप जाने की कोशिश करिए, है ना। हम बाहर की दुनिया में तो बहुत देख रहे हैं, हमने कभी अंदर झांक करके नहीं देखा। और थोड़ा भी आप जब इंटरनलाइज करेंगे तो विचारों की गति भी शांत होगी, और जैसे ही विचारों की गति शांत हो तो फिर उसको चैनलाइज करिए कि आत्मचिंतन की ओर मोड़िए, क्योंकि वही रियलाइज करना है।
तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने फर्स्ट स्टेप बताई इंटरनलाइज, कई बार ऐसा होता है कि हम जब अपने अंदर जाते हैं, थॉट्स को इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, तो भाई ये थॉट्स, अलग अलग विचार हमारे मन को बहुत इंटरप्ट करते हैं, इनको कैसे कंट्रोल किया जाए?
इसके लिए सोचता हूँ तीन काम करने हैं
जी।
एक तो जब शुरुआत करते हैं तब ही सजग होकर के शुरुआत करें, कहेंगे अवेयर हो जाओ, अवेयरनेस। अगर आपकी अवेयरनेस अच्छी है तो वह डिस्टर्बिंग विचार थोड़े कम होंगे, फिर भी आएंगे परंतु वह विचार कम होंगे, या तो आप उसको तुरंत ही कैच करेंगे, जैसे आए आपको समझ में आ जाएगा। फिर दूसरी जरूरत है कि साक्षी भाव से देखो, आ रहे हैं तो भी साक्षी हो जाओ, जैसे साक्षी होंगे विचार कम हो जाएंगे। आपने कभी देखा है कि बिल्ली चूहे को कैसे पकड़ती है, ऐसे ये देखो, बिल्ली क्या करती है, बैठी रहती बस, जैसे चूहा ही तुरंत पकड़ लेती है। तो ऐसे अगर व्यक्ति ट्राई करे कि दूसरा विचार कहां से आ रहा है, मुझे उसे पकड़ना है, साक्षी भाव से देखे तो दूसरा विचार नहीं आएगा
जी।
तो इस कुछ युक्तियों से हम उन विचारों को कम कर सकते हैं। और फिर तीसरी बात है कि सचमुच मोड़े, जितना आपके पास वो चिंतन का स्टॉक होगा। जब मैंने भी शुरुआत की आज से 30 साल पहले, तो जब शुरू में मेडिटेशन सीखा तो अच्छा लगा, परंतु कुछ समय के बाद ये हुआ कि भाई जब चिंतन करते हैं थोड़ी समय में चिंतन खत्म हो जाता,
खत्म,
क्योंकि ज्ञान नहीं था पूरा। फिर ये ढूंढा कि कहां से इस चिंतन को बढ़ाना है, चिंतन का स्टॉक ज्यादा मिला तो मन को एकाग्र करना सहज हो गया। तो ये तीन चीजें अपनानी चाहिए।
तो इंटरनलाइज के बाद फिर आपने बताया,
फिर है चैनलाइज है, फिर थर्ड स्टेज है विजुअलाइज, कि जिसको भी आप चैनलाइज कर रहे हैं, जिस दिशा में आत्मचिंतन की ओर चैनलाइज कर रहे हैं, तो उसको विजुअलाइज भी करें, वह चित्र भी निर्माण करें। और ये कल्पना नहीं है, बिकॉज दिस इज अ विजुअलाइजेशन ऑफ रियलिटी।
क्योंकि मेडिटेशन अक्सर लोग इमेजिनेशन से कंफ्यूज कर देते हैं, मेडिटेशन इज नॉट
इमेजिनेशन। हाँ, आप विजुअलाइज कर रहे हैं परंतु रियलिटी को विजुअलाइज कर रहे हैं
जी।
और रियलिटी को विजुअलाइज करना इजी है, जैसे भी यह सोचना कि मैं डॉक्टर हूं क्योंकि मैं डॉक्टर हूं तो वो इजी है। नहीं, अगर कोई मुझे कहे कि तुम विजुअलाइज करो तुम जनावर हो, तो भी शायद मैं कर सकता हूं, लेकिन बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज इट्स नॉट फैक्ट, इट्स नॉट रियल। तो इसलिए वह आत्मा का रियलाइजेशन इजी है।
और मैं समझता हूं कि ये विजुअलाइजेशन थोड़ा लोगों को डिफिकल्ट इसलिए भी लगेगा क्योंकि ये विस्मृति हमें हो गई है कि हम आत्मा है, हम जो हम हैं वो हम अपने आप को नहीं समझ पाते। बार बार यही बात हम स्ट्रेस कर रहे हैं कि ये एंटिटी, ये स्पिरिचुअल एंटिटी, ये साइकिक एंटिटी हमारे अंदर है। तो इस एंटिटी को विजुअलाइज जब हम करेंगे, इट विल टेक सम टाइम, एट लीस्ट
बिगिनिंग
एफर्ट, बिगिनिंग।
पर एक बार आपको अनुभव हो गया फिर उसकी गहराई में जाना बिल्कुल से, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं तो भी ये पॉसिबल है कि भी उस कॉन्शियसनेस को मेंटेन करूं,
क्योंकि वो अवेयरनेस को समय रही है।
हाँ, क्योंकि मैं वो स्पिरिचुअल एनर्जी हूं, उसको मेंटेन कर सकते हैं
जी।
तो फिर उसे विजुअलाइज करो। फिर फोर्थ स्टेज और भी इम्पोर्टेंट है, वह है कि डिविनाइज, उसमें डिविनिटी को भी ऐड करना जरूरी है
जी।
कि सचमुच मैं एक दिव्य शक्ति हूं, परमात्मा भी डिवाइन फोर्स है, कोई फिजिकल बात पर मैं कंसंट्रेट नहीं कर रहा हूं। तो जितना उसमें हम डिविनिटी को ऐड करेंगे, या तो ये भी कहे कि विभावनाओं को ऐड करेंगे, तो फिर रियलाइज करना भी सहज हो जाएगा
जी।
तो रियलाइजेशन में शांति का अनुभव तो होता ही है, हम डिटैच भी होते जाते हैं, परंतु साथ साथ शरीर में भी वो परिवर्तन आते हैं, कि जिसको भी हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं
जी। सो मेडिटेशन टर्न्स इनटू एन एक्सपीरियंस बाय दीज फाइव सिंपल स्टेप्स। ये और डॉक्टर, जब हम अपने आप को आत्मा समझ लेते हैं, अपने आप को एक स्पिरिट, एक साइकिक एनर्जी, एक पॉइंट ऑफ लाइट समझ लेते हैं, तो मैं समझता हूँ आत्मा की जो ओरिजिनल पावर्स हैं, जिनके बारे में मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ऐसी कौन सी पावर्स हैं, वो स्वतः ही इमर्ज होने लग जाती हैं। जैसे पीस है,
हाँ जी, हाँ,
प्योरिटी है,
हाँ जी, ये जो क्वालिटीज है,
क्वालिटीज
ऑफ आत्मा की जो ओरिजिनल क्वालिटीज है, वो क्वालिटीज ऑटोमेटिकली आप फील करने लगते हैं। पावर का भी जो आपने कहा वो भी पॉसिबल है, जिसको हम राजयोग में अष्ट शक्तियां कहते हैं
जी।
कि जब भी आप मेडिटेशन करने लगते हो, ऑटोमेटिकली आप में जजमेंट की पावर आ जाती है, यू गेट पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यू गेट ऑल्सो पावर ऑफ टॉलरेंस, नो पावर टू फेस द सिचुएशन,
पावर टू विड्रॉ,
वो बताने की आवश्यकता नहीं,
ये ऑटोमेटिकली
वो ओरिजिनल जो स्टेज है उस स्टेज का आपने अनुभव किया।
अच्छा डॉक्टर साहब, कई बार ही हमने देखा है कि जो मेडिटेशन ब्रह्मा कुमारीज प्रैक्टिस करते हैं उन्हें सहज राजयोग भी कहा जाता है। सहज राजयोग में ये जो वर्ड सहज है उसका लिटरली मीनिंग देखा जाए तो इजी है कहा जाता है। सहज मतलब इजी है, तो कितना इजी आप इसे कहेंगे? ये स्टेप्स क्या आप समझते हैं प्रैक्टिकली हर व्यक्ति कर सकता है?
ये बिल्कुल इजी है, एक छोटा बच्चा भी कर सकता है वास्तव में, बूढ़ा व्यक्ति भी।
फिजिकली और छोटे बच्चे भी आते हैं?
काफी 3-4 साल के आप अच्छे काफी संख्या में बच्चे देखेंगे और अच्छा ध्यान कर रहे हैं। आप उनको देखो तो भी आश्चर्य होगा कि कितना अच्छा ध्यान कर रहे हैं। और बूढ़े 93 ईयर्स के है कि जो भी अच्छी तरह से ध्यान कर सकते, क्योंकि ये टेक्निक इजी है। और दूसरा इजी का मैं अर्थ समझाता हूं कि वह नेचुरल, इसमें कोई आर्टिफिशियल बात नहीं है। आप अपनी जो नेचुरलनेस है उसी नेचुरलनेस में स्थित होकर के अभ्यास करते हैं तो उसका एक्सपीरियंस करना भी सहज हो जाता है।
सर डॉक्टर, एक प्रश्न मेरे दिमाग में और आता है जो मैं सोचता हूँ हमारे दर्शक भी सोच रहे होंगे कि ये मेडिटेशन कहाँ पर सिखाई जाती है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति इच्छुक हो, हमारे दर्शकों में से कोई जाना चाहे तो कहाँ पर उनको इसका पता कैसे मिलेगा? क्या कुछ सेंटर्स हैं, कुछ पर्टिकुलर प्लेसेस हैं जहाँ पर ये मेडिटेशन बताया जाता है, और इसका कॉस्ट कितना है?
अच्छा, ब्रह्मा कुमारी इसके करीब 7,000 से अधिक सेवा केंद्र सारे भारत में, विदेश में भी है,
विदेश में
ओवर 100 कंट्रीज में ब्रह्मा कुमारी इसके सेंटर्स है। परंतु अगर हम भारत की बात करें तो भी आप देखेंगे कोने कोने में ब्रह्मा कुमारी इसके सेंटर्स है, करीब सभी डिस्ट्रिक्ट प्लेस में होंगे। बड़े शहरों में तो आपको अनेक सेवा केंद्र मिलेंगे कि जहां पर बिना मूल्य यह जो बेसिक कोर्स है जो 5 से 7 दिन का होता है, जिसमें जो मैंने प्रोसेस बताया, करीब बस 1 घंटे का टाइम देना है, और जो प्रोसेस मैंने शॉर्ट में बताया वो थोड़ा डिटेल में समझाया जाता है। सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में गहराई से बताते हैं, परमात्मा से डायरेक्ट कम्युनिकेशन कैसे जोड़ा जाए उसके बारे में डिटेल में समझाया जाता है।
और इसका कुछ कॉस्ट है कुछ ऐसी?
मैंने कहा भी कि निःशुल्क है, और शुरू से ये सोचा गया है। ब्रह्मा बाबा भी ये कहते थे कि जो ध्यान है, मेडिटेशन है, वो तो परमात्मा की देन है, उसके ऊपर प्राइस टैग लिखी हुई नहीं होनी चाहिए, तभी सभी उसको अच्छे से कर सकेंगे।
डॉक्टर साहब, समय बहुत हुआ है, लेकिन हम जाने से पहले हम जरूर चाहेंगे कि जो राजयोग मेडिटेशन आपने इतने सालों से की है, हमारे दर्शकों को कुछ अनुभव आप जरूर करा कर जाएं, या कुछ शॉर्ट अनुभव 1 या 2 मिनट के अंदर
जरूर। बड़ी ये सिंपल सी विधि है कि भी हम शरीर को स्थिर रख करके बैठते हैं। अच्छा तो यह है कि भी नेचुरली आंखें खुली रखे, शुरू में दिक्कत हो सकती है तो कोई चाहे तो आंखें बंद भी कर सकता है, और फिर जो मैंने 5 प्रोसेस बताए उसके द्वारा हम ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं कि ऐसे सारे शरीर को स्थिर रखते हुए सबसे पहले हम इंटरनलाइज करते हैं कि यह शरीर मेरा है, इस शरीर का उपयोग करने वाली मैं दिव्य चेतना हूं, दो प्रकृतियों के मध्य में प्रकाश में ज्योति बिंदु आत्मा हूं, जैसे ही इस बात को मैं अनुभव में लाता हूं कि मैं इस शरीर से भिन्न अविनाशी शक्ति हूं, शांति का अनुभव होने लगता, शांति मेरा स्वधर्म है, शांति का अखूट भंडार मुझ में समाया हुआ है। बस जैसे ही मैं ये अपनी मूल स्थिति का अनुभव करने लगता हूं, तो मन बुद्धि का संबंध भी परमात्मा से जोड़ सकता हूं, मेरे परम प्रिय परम पिता परमात्मा भी
एक अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति बिंदु है, रूप में बिंदु पर सर्व गुणों के सिंधु है परमपिता परमात्मा। बस मैं आत्मा उनके सन्मुख ही हूं, उनके गुणों को अपने आप में अनुभव कर रही हूं। अब धीरे से वापस मैं इस देह के बारे में जागृत होता हूं, परंतु मैं वह शांत स्वरूप आत्मा हूं। इस अनुभूति को कर्म करते हुए भी कायम रखूंगा। ओम शांति। इस प्रकार बलिए बहुत कम, वास्तव में कम से कम 7-1 मिनट तो ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। उतना करे तो प्रैक्टिकली उस समय भी हम गहरी शांति में जा सकते हैं। जैसे अभी भी भले थोड़ा हमने 2-3 मिनट भी किया,
लेकिन एक एक्सपीरियंस होता है।
तो अभी मुझे लगा कि हम डीप साइलेंस।
डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ना केवल हमारे दर्शकों को यह बताया कि मेडिटेशन क्या है और किस प्रकार से की जा सकती है, लेकिन एक ये छोटा सा प्रैक्टिकल अनुभव हमारे लिए मेमोरेबल रहा। ये हमेशा हमारे साथ और हमारे दर्शकों के साथ रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि मेडिटेशन एक ऐसा टूल है जिसको यूज करना हमारे अपने हाथ में है। इसका कोई कॉस्ट नहीं, केवल हमें चाहिए समय और समझ और यथार्थ ज्ञान कि राजयोग मेडिटेशन किस तरह किया जा सकता है। यह मेडिटेशन, ये योगाभ्यास हमारे जीवन को, आपके जीवन को हमेशा के लिए खुशनुमा कर सकता है और परिवर्तन ला सकता है। यदि आप इस मेडिटेशन को करना चाहते हैं और अपने जीवन में खुशियां लाना चाहते हैं, अपने जीवन में खुशियां बांटना चाहते हैं और इस संसार को खुशनुमा बनाना चाहते हैं, तो आप नियरेस्ट ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जा सकते हैं और निशुल्क यह मेडिटेशन सीख सकते हैं। यदि आपको अपने नियरेस्ट सेंटर का एड्रेस चाहिए या पता चाहिए तो आप हमें लिख सकते हैं। हमारा ईमेल है omshantistudio@gmail.com। आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 9873666555। आशा है आपको यह हमारा एपिसोड पसंद आया होगा। हम कल फिर हाजिर होंगे। हम कल चर्चा करेंगे डॉक्टर गिरीश पटेल के साथ थॉट पावर के विषय में। तब तक हम आपसे आज्ञा चाहते हैं। नमस्कार।